आगे सबक देखिए। वयजूज़ु निकाहु सगीरी व सगीरति इदा ज़व्वजहुम अलवली बिकरन कानति सगीरतु औ सय्यिबा والولي هو العصبة ومالك رحمه الله يخالفنا في غير الأب والشافعي رحمه الله تعالى في غير الأب والجد وفي السيب الصغيرة أيضا। गुज़श्ता सबक में इस्तीमार का मसला जिक्र फरमाया था साहिब हिदाया ने कि वली जो है बाकिरा बालिगा से इजाजत लेगा, तो अगर वो खामोश रही तो उसकी यह खामोशी भी रजामंदी की दलील है। इसलिए क्योंकि ये जो खामोशी है इसमें अगरचे दोनों जिहतें हैं, हो सकता है खामोशी इसलिए हो कि राजी है, हो सकता है खामोशी इसलिए हो कि वो रद्द कर रही है, लेकिन इसके अंदर रजामंदी वाली जिहत राजिह है। वजह यह कि यह बाकिरा है, इसमें बे इंतहा ज्यादा हया है, लिहाजा इसके लिए बहुत मुश्किल है कि ये रजामंदी का इजहार करे और निकाह के अंदर अपनी रगबत को जाहिर करे, जबकि रद्द करने के अंदर तो कोई हया वगैरह मानिया नहीं। तो लिहाजा अगर रद्द करना चाहती तो वो रद्द करती जाहिरन भाई, लिहाजा ये खामोशी इसको किस पर महमूल किया जाएगा? रजामंदी पर। और नीस हदीस के अंदर भी आता है कि अलबिक्रु तुस्ता मरुफी नफसिहा फ इन सकतत फकद रजियत, कि बाकिरा से मशवरा लिया जाएगा उसकी जात के बारे में, अगर वो खामोश रही तो वो तहकीक वो राजी है भाई। और फिर जैसे खामोशी दलील है रजामंदी पर, इसी तरह हंसना इसमें तो बाकायदा उसकी तरफ से एक फेल भी आ गया हंसने वाला, लिहाजा ये ज्यादा दलालत करता है रजामंदी पर। और रोने के अंदर मैंने बतलाया था अगर बगैर आवाज के रोए तो ये रोना भी रजामंदी की दलील है, मालूम हो वो घर वालों से जुदाई के ख्याल से उसके आंसू बह रहे हैं, और अगर वो आवाज से रो रही है मालूम हुआ उसको ये बात पसंद नहीं आई, उसको ये निकाह पसंद नहीं आया, वो इसको रद्द कर रही है। ये तो था वली के अंदर, वली के अंदर खामोशी वगैरह रजामंदी की दलील है। अगर गैर वली ये मशवरा लेने के लिए गया या दूर वाला वली जो है वो मशवरा लेने के लिए गया, तो फिर जब तक वो जुबान से रजामंदी का इजहार नहीं करेगी तब तक इस खामोशी या इस हंसने को रजामंदी नहीं समझा जाएगा। वजह यह क्योंकि वली के अलावा बाकियों के सामने ये जो खामोशी है वो दरअसल उनके कलाम की तरफ कम तवज्जो करने की वजह से है, गोया वो उनके कलाम की तरफ तवज्जो ही नहीं कर रही कि ये कौन है मेरे निकाह के मामले में दखल देने वाले, इसलिए खामोश रहती है और जवाब ही नहीं देती, लिहाजा इसे रजामंदी पर दलालत नहीं होगी। और अगर इसे रजामंदी पर दलालत मान भी लिया जाए तो भी इसमें दूसरी जानिब का भी एहतमाल है, हो सकता है इसलिए खामोश हो कि वो रद्द कर रही है भाई। और वली के अंदर तो हाजत की वजह से हमने इस दलील पर इक्तफा कर लिया था, वली के मामले में तो हाजत थी, वली तो उसका निकाह करवाना चाहता है और वो हया की वजह से बोलती नहीं है, तो अगर उसके बोलने को लाजिम करार दिया जाए फिर तो उसके निकाह की मसलहतों में खलल आएगा, उसका निकाह करवाना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? लिहाजा वली के सिलसिले में तो खामोशी को दलील माना जाएगा, गैर वली के अंदर इन चीजों की हाजत नहीं, वहां जुबान से कहना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, लिहाजा वहां जुबान से ही उसकी इजाजत देना जरूरी है। हां अगर वो इजाजत लेने वाला वो वली का पैगाम रसा है, वली ने उसको भेजा है पूछने के लिए और वो आकर बतलाता है कि मुझे आपके वली ने भेजा है, आपके वाली साहब ने भेजा है ये पूछने के लिए, तो फिर वली के रसूल का भी वही हुक्म है जो वली का था, और वली के सामने तो खामोशी दलील थी रजामंदी की, तो इसके सामने भी खामोशी और हंसना और बगैर आवाज के रोना ये सब रजामंदी की दलीलें होंगी। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बताया कि मशवरे के अंदर खावंद का नाम जिक्र करना और उसकी पहचान करवाना भी जरूरी है, अगर उसके बगैर उस निकाह की इजाजत ली और खावंद का नाम वगैरह नहीं लिया कि किससे निकाह करवा रहे हैं तो फिर इस इजाजत का एतबार नहीं है, बल्कि खावंद की पहचान करवाना जरूरी है भाई। जबकि महर का जिक्र जरूरी नहीं है, हां अगर महर बहुत ज्यादा कम रखा है वली ने तो फिर इस सूरत में महर का बतलाना भी जरूरी है भाई। और मैंने बतलाया था कि निकाह से पहले इजाजत लेना या निकाह के बाद इजाजत ली जाए, दोनों का एक ही हुक्म है। एक सूरत तो यह है, निकाह से पहले ही आया कि मैं फला जगह फला आदमी से आपका निकाह करवा रहा हूं, और दूसरी सूरत यह है कि वली ने निकाह करवा दिया है, अब आकर उसको इत्तला दे रहा है। तो याद रखो, इस सूरत में अगर यह इजाजत देगी तो वह निकाह मुनाकिद हो जाएगा, अगर इजाजत नहीं देगी तो वह निकाह मुनाकिद नहीं होगा। तो ये जो निकाह के बाद इजाजत लेने आया है वली, इसके अंदर भी वो ही उसी तरह खामोशी रजामंदी की दलील होगी, हंसना और बगैर आवाज के रोना रजामंदी की दलील होगी। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी बतलाया कि अगर ये जो निकाह करवाने के बाद खबर दी गई, एक तो सूरत ये है वली ने खुद आकर खबर दी, वली ने, और दूसरा है कोई और आकर खबर देता है, तो ये जो खबर दे रहा है ये मीन वजह खबर है और मीन वजह शहादत है, क्योंकि यहां खामोशी की वजह से उस लड़की पर निकाह लाजिम हो रहा है। खामोश रहेगी तो क्या होगा, निकाह लाजिम हो जाएगा। तो देखो, जैसे शहादत के अंदर एक चीज दूसरे पर लाजिम कर दी जाती है, जैद और अमर में झगड़ा हुआ एक चीज के बारे में, जैद कहता है ये चीज मेरी है, अमर कहता है ये चीज मेरी है, जैद ने दो गवाह पेश कर दिए, गवाहों ने गवाही दे दी कि काजी साहब जैद इस चीज का मालिक है क्योंकि जैद ने ये चीज खरीदी थी हमारे सामने। तो अब देखो, काजी इन दो गवाहों की वजह से अमर के खिलाफ फैसला कर देगा, तो देखो वो दो गवाहों का कौल अमर पर नाफिज हो गया, उस पर लाजिम हो गया। तो मालूम हुआ गवाही के अंदर दूसरे पर कोई चीज लाजिम की जाती है। तो यहां पर भी ये लड़की जब खामोश रहेगी तो ये निकाह इस पर लाजिम हो जाएगा। तो देखा जाए, बाज एतबार से ये जो निकाह की खबर लाए हैं, बाज एतबार से ये खबर ही है, एक बात बतला रहे हैं, और दूसरे एतबार से देखा जाए तो ये निकाह लड़की पर लाजिम हो रहा है, तो ये शहादत भी है। तो बाज एतबार से ये शहादत है, बाज एतबार से ये शहादत नहीं है। तो लिहाजा इसके अंदर शहादत के अंदर दो चीजें होती हैं, एक अदद के गवाह दो होने चाहिए कम अज कम, और नीज एक उनकी अदालत के गवाह आदिल और काबिल एतमाद होने चाहिए, तो फिर ही काजी उनके गवाही पर फैसला करना उस पर लाजिम हो जाता है। तो गवाही के अंदर दो चीजें हैं, और ये जो लड़की को आकर खबर दी है ये मीन वजह खबर है, मीन वजह शहादत है, या यूं कहो ये मीन वजह शहादत है, मीन वजह शहादत नहीं है। तो इसके अंदर शहादत की दोनों चीजें जरूरी नहीं होंगी, हां दोनों में से एक का होना जरूरी है। बाज एतबार से ये शहादत है लिहाजा एक चीज जरूर होनी चाहिए, बाज एतबार से ये शहादत नहीं है लिहाजा दूसरी चीज जरूरी नहीं है। तो या तो आदत होना चाहिए, ये खबर लाने वाले जो फजूली हैं दो अफराद होने चाहिए, या अगर एक है तो फिर वो कम अज कम काबिल एतमाद होना चाहिए, सच्चा आदमी होना चाहिए। बात समझ में आ गई। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, ये तो खबर ही है, इसमें शहादत नहीं, लिहाजा इसके अंदर एक आदमी भी खबर दे देगा तो काफी है भाई। जबकि इसके मुकाबले में अगर खबर देने वाले को खुद वली ने भेजा है, वो उसका पैगाम रसा है, तो फिर उसका तो बिल इत्तेफाक वही हुक्म है जो वली का था, और वली जो है ना वहां पर अदद की शर्त थी ना अदालत की शर्त थी, तो इस पैगाम रसा के अंदर भी इन दोनों शर्तों में से कोई शर्त नहीं होगी भाई। वो इत्तला देगा, ये खामोश रहेगी तो निकाह लाजिम हो जाएगा। लेकिन फजूली के मसले में अगर इत्तला दी, अगर वो दो थे या वो एक था और काबिल एतमाद था और लड़की बाकिरा है, वो खामोश रही या हंस पड़ी, तो ये निकाह मुनक़िद हो जाएगा। लेकिन अगर वो फजूली, उसके अंदर ना अदद है ना अदालत है, दो नहीं है एक है, और नीज आदिल भी नहीं है, तो फिर इस सूरत में याद रखो उस लड़की की खामोशी या हंसना यह रजामंदी की दलील नहीं होगी, वह निकाह अभी भी मौकूफ है जब तक यह जुबान से इसकी इजाजत न दे दे। बात समझ में आ गई, तो इजाजत दे देगी या फिर रद्द कर देगी। साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि इसकी और भी नजीरें हैं, मसलन जहां पर बाज औकात खबर जो है वो मीन वजह शहादत होती है और मीन वजह खबर होती है, जैसे वकील को माजूल करने की खबर दी जाए। भाई जब आप किसी काम में किसी को वकील बनाते हैं, वो जाकर वो तसर्रुफ करता है, तो वो तसर्रुफ मुअक्किल पर लाजिम होता है क्योंकि मुअक्किल ने उसको भेजा था। लेकिन अगर मुअक्किल ने उसको माजूल कर दिया और इसने फिर भी जाकर वो तसर्रुफ कर लिया, तो वो फिर वकील पर ही लाजिम हो जाएगा, मुवक्किल के ऊपर वो लाजिम नहीं होगा। तो देखो, तो मीन वजह सिर्फ उसको खबर दी जा रही है, आपको माजूल कर दिया, लेकिन दूसरे एतबार से अब जो वो तसर्रुफ अगर फिर भी करेगा तो वो उसी के वकील के ऊपर ही लाजिम हो जाएगा। तो मीन वजह इसके अंदर इल्जाम भी है, लिहाजा ये शहादत भी है। तो लिहाजा माजूल करने की जो खबर है वो मीन वजह खबर है, मीन वजह शहादत है, तो उसमें भी शहादत की दो चीजों में से एक का होना जरूरी है, या माजूली की खबर देने वाले दो अफराद होने चाहिए, या एक हो लेकिन काबिल एतमाद हो, आदिल हो। गई उसके बाद फिर साहिब हिदाया ने बतलाया कि अगर सैयबा यानी जो गैर कंवारी है उससे अगर इजाजत ली जाए तो फिर उसकी खामोशी रजा की दलील नहीं, बल्कि वहां पर उसका जुबान से बोलना जरूरी है। ये इसी तरह है जैसे वली किसी बालिग लड़के का निकाह करवा दे तो वहां बालिग लड़के का निकाह भी मौकूफ रहेगा उसकी इजाजत पर, जब वो अपनी जुबान से इजाजत दे देगा तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा, और अगर इजाजत नहीं देगा तो वो निकाह मुनाकिद नहीं होगा। भाई फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि अगर बाकिरा की बकारत जो है किसी सबब से बकारत उसकी जायल हो जाए, खत्म हो जाए, मसलन उछलने कूदने की वजह से बकारत जायल हो गई, या हैज की कसरत की वजह से, या किसी जख्म की वजह से, या ज्यादा उम्र गुजर गई है और अभी तक इसकी शादी नहीं हुई, तो इसकी वजह से अगर बकारत जायल हो जाए तो फिर ये किसके हुक्म में है, बाकिरा के हुक्म में है या ये अब सैयबा के हुक्म में है? तो बतलाया ये अब भी बाकिरा के हुक्म में है, इसलिए क्योंकि ये अरबी जुबान के एतबार से अभी भी बाकिरा है, क्योंकि बिकर मादा बा काफरा, ये मादा जहां भी आता है वहां अव्वल होने वाला माना पाया जाता है, तो इसके साथ जो भी निकाह करेगा वो इसको अव्वल पाने वाला होगा, तो ये हकीकत में अभी भी बाकिरा है अगरचे इसकी बकारत जायल हो चुकी है। तो बिकर का मादा जहां भी आए वहां अव्वल होने का माना होता है, जैसे ये बाकिरा है, इसी तरह बाकूरा वो पहला फल जो किसी मौसम में आता है उसको बाकूरा कहते हैं, इसी तरह सुबह का अव्वल वक्त जो होता है उसको बुकरतुन कहते हैं। तो मालूम हुआ ये बाकाफरा मादा जहां भी आएगा वहां अव्वल होने वाला माना होगा, और ये बाकेरा के अंदर भी मौजूद है, तो ये हकीकतन बाकेरा ही है भाई। लिहाजा इससे वली ने निकाह के बारे में आकर पूछा तो बाकेरा वाला हुक्म है, लिहाजा इसकी खामोशी रजामंदी की दलील होगी। और अगर लड़की की बकारत जीना की वजह से जायल हो गई तो इमाम साहब फरमाते हैं अभी भी इसका बाकिरा वाला हुक्म है, जबकि साहिबैन और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, ये तो अब सैयबा हो चुकी है, हकीकत के एतबार से ये सैयबा हो चुकी है, और सैयब साबा यसूबु सौबन से है, और साबा यसूबु सौबन का माना है लौटना, वापस आना। तो यहां पर भी देखो ये सैयब है, यानी जो पाने वाला है इसको, वो इसको पहला पाने वाला नहीं, लिहाजा ये सैयब है। तो साहिबैन और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक ये सैयबा है, लिहाजा अब इसकी खामोशी रजामंदी की दलील नहीं, वली निकाह करवाए तो इसका जुबान से कहना जरूरी है। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि अगरचे इसकी बकारत जिना से जायल हुई है लेकिन लोग तो अभी भी इसको बाकेरा ही जानते हैं, सबको तो इस बात का पता नहीं, लिहाजा अगर ये अपनी जुबान से बोलेगी तो फिर लोग उसको ऐब बना लेंगे। जुबान से बोलना इसके लिए क्या बन जाएगा? ऐब बन जाएगा। लिहाजा ये बोलेगी नहीं, खामोश रहेगी, और जिसकी वजह से इसके निकाह की मसलहतों में खलल आएगा, फिर तो इसका निकाह करवाना मुश्किल हो जाएगा। और नीज आप इसको वती भी शुबा और निकाह फासिद पर भी कियास नहीं कर सकते। मैंने बताया था वती भी शुबा कि जहां किसी शुबे की वजह से वती कर ली जाए, मसलन एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाके बाइन दे दी है और अब इसके लिए इस बीवी से सोहबत जायज नहीं, लेकिन ये फिर भी सोहबत कर लेता है और कहता है मुझे तो इलम नहीं था, मैं तो समझ रहा था कि इद्दत के दौरान अभी भी ये औरत मेरे लिए हलाल है, तो ये वती भी शुबा है भाई। और इसी तरह निकाह फासिद जो है जिसमें निकाह की शर्तों में से कोई शर्त पूरी ना हो, मसलन गवाह मौजूद नहीं है, या पांचवीं औरत से निकाह कर रहा है एक ही वक्त में, या इसी तरह दो औरतों को जिनको जमा करना जायज नहीं है, दो बहनों को जमा कर रहा है एक शख्स निकाह के अंदर, तो ये सब क्या है? निकाह फासिद। और ये बात गुजर चुकी कि निकाह फासिद और बातिल का एक ही माना है, चाहे निकाह फासिद कह लें चाहे निकाह बातिल। बैय के अंदर फर्क है, बैय फासिद और होती है, बैय बातिल और होती है। बैय बातिल वो है जो जात के एतबार से ही जायज ना हो, वो बैय है, और बैय फासिद वो है जो जात के एतबार से तो जायज है लेकिन वसफ के एतबार से उसमें कोई खराबी आ रही है। जबकि निकाह के बाब में फासिद और बातिल का एक ही माना है, चाहे निकाह फासिद कहें चाहे निकाह बातिल कहें भाई। तो ये निकाह फासिद बातिल है, इसका कोई एतबार ही नहीं, निकाह हुआ ही नहीं। तो इस निकाह फासिद का कोई हुक्म नहीं है, न इसकी वजह से महर आएगा, न इसकी वजह से हुरमत मुसाहरत आएगी, न इसकी वजह से औरत पर इद्दत आएगी, जब तक सोहबत न कर ले। हां, अगर निकाह फासिद के बाद सोहबत कर ली तो ये वती भी शुबा पाई गई, तो वही वती भी शुबा वाले सारे अहकाम आ जाएंगे। यानी जैसे वती भी शुबा के अंदर औरत फिर नए सिरे से इद्दत गुजारती है, यहां भी दोबारा उसको तीन हैज गुजारने पड़ेंगे, उससे पहले उसका आगे निकाह ही जायज नहीं होता। इसी तरह इस औरत को, ये जो आदमी जिसने वती की है, इसको महर भी देना पड़ेगा, क्योंकि ममलिकत इस्लामिया के अंदर वती पर दो चीजों में से एक जरूर आएगी, या महर देना पड़ेगा या हद आएगी। या क्या आएगी? हद। याद रखो, कीमती बात है, ममलिकत इस्लामिया के अंदर जो शख्स भी वती करता है, किसी औरत से सोहबत करता है, दो चीजों में से एक उस पर जरूर आएगी, या तो अगर ये उसने हराम वती की है तो फिर इस सूरत में हद आएगी, हद आएगी, और अगर ये हलाल वती की है तो वहां मालूम हो वो बीवी है, वहां महर देना पड़ता है। और अगर वती भी शुबा की है, शुबे की वजह से ये समझा ये औरत मेरे लिए हलाल हो चुकी है, तो इस सूरत में भी महर देना पड़ेगा। तो दारुल इस्लाम के अंदर वती की वजह से दो चीजों में से एक जरूर आएगी, या हद आएगी या महर आएगा। तो यहां पर वती भी शुबा की है या निकाह फासिद की और वती कर ली है, तो फिर इस सूरत में महर भी देना पड़ेगा, इस औरत पर इद्दत भी लाजिम होगी, और नीज अगर इस वती से बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा इसी शख्स का शुमार होगा, यह वलदुज़्ज़िना शुमार नहीं होगा। भाई बात समझ में आ गई भाई? तो इमाम साहब की दलील चल रही है भाई। इमाम साहब फरमाते हैं ये जो लड़की जिसकी बकारत जिना की वजह से जायल हुई है, ये अभी भी बाकेरा के हुक्म में है, और आप इसको उस औरत के साथ जिसके साथ वती भी शुबा की गई या निकाह फासिद करके फिर वती उसके साथ की गई, आप उस पर इसको कयास नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि इस लड़की ने तो जिना किया है और शरीयत ने जिना को छुपाने का हुक्म दिया है, जबकि वती भी शुबा और वती भी निकाह फासिद जो है उसके तो शरीयत ने बाकायदा अहकाम जिक्र फरमाए हैं कि वहां नसब भी साबित होगा, इद्दत भी गुजारना पड़ेगी, महर भी देना पड़ेगा, तो वहां तो शरीयत ने पर्दा नहीं डाला, बल्कि जब अहकाम बतलाए हैं मालूम हो शरीयत ने तो उसको जाहिर किया है भाई। तो एक चीज वो है जिसको छुपाया जाना चाहिए और एक चीज वो है जिसको शरीयत खुद जाहिर कर रही है, तो आप एक को दूसरी पर कयास नहीं कर सकते। वती भी शुबा और निकाह फासिद की वजह से तो वो औरत या वो लड़की जो है अब वो सैयबा ही शुमार होगी, लेकिन ये जिना वाली जो है ये सैयबा शुमार नहीं होगी, इल्ला ये कि इसके जिना जो है वो मशहूर हो जाए, मसलन इसकी आदत ही ये बन गई है, या इस पर हद जिना जारी हो गई है, अब तो सबको पता चल गया है, तो अब ये सैयबा के हुक्म में है, अब इसकी खामोशी रजामंदी की दलील नहीं है। और फिर उसके बाद साहिब हिदायत ने बतलाया कि अगर खावंद और बीवी में इख्तलाफ हुआ निकाह के बारे में, खावंद कहता है कि जब तुम्हें निकाह की खबर पहुंची थी तो तुम खामोश रही थी, और बीवी कहती है नहीं मैंने तो रद्द कर दिया था, तो हमारे अइम्मा फरमाते हैं कि इस सूरत में औरत का कौल मोतबर है। वजह यह कि खावन दावा निकाह कर रहा है कि निकाह हो चुका है और वो लड़की उसको रद्द कर रही है, तो वो मुनकिरा है और कौल जो है वो मुनकिर का मोतबर होता है। मैंने आपको बतलाया था कि हदीस में आता है अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीन अला मन अनकरा, कि बय्यना मुद्दई के जिम्मे है कि वो दो गवाह पेश करे, और अगर वो गवाह पेश न कर सके तो फिर मुद्दा अलै जो है मुनकिर जो है उससे कसम ली जाएगी। और मैंने ये भी बतलाया था आपको कि कसम हमेशा नफी पर होती है, इस बात के लिए नहीं कि ये चीज वल्लाह मेरी है, नहीं, इस बात के लिए बय्यना चाहिए होती है, हां इनकार पर कसम होती है कि वल्लाह ये किताब जैद की नहीं है बल। तो लिहाजा यहां पर खावन मुद्दाई हुआ और बोल बाकिरा लड़की जो है वो मुद्दा अलैह हुई, लिहाजा उसका कौल मोतबर है। जबकि इमाम जुफर फरमाते हैं नहीं, खावन का कौल मोतबर है। भाई खावन का कौल कैसे मोतबर है, वो तो मुद्दाई है। कहते हैं नहीं, मुद्दाइया असल में औरत है। वजह यह कि खावन दावा कर रहा है कि तुम खामोश रही थी, वो खामोशी का दावा कर रहा है, और वो जो औरत है वो रद्द का दावा कर रही है कि मैंने रद्द कर दिया था, और खामोशी असल है, खामोशी में आदम कलाम है और रद्द के अंदर कलाम होता है, तो खामोशी असल है और रद जो है वो खिलाफुल असल है, और जाप्ता ये है कि जो खिलाफुल असल का दावा करे वो मुद्दाई होता है, और रद खिलाफुल असल है, और रद औरत कर रही है तो औरत खिलाफुल असल दावा कर रही है लिहाजा वो मुद्दाइया हुई, और खावन सुकूत खामोशी का दावा कर रहा है और खामोशी तो असल है तो वो असल का दावा कर रहा है लिहाजा वो मुद्दा अलह हुआ भाई, लिहाजा यहां औरत मुद्दाइया है और खावंद मुद्दा अलह हुआ भाई, और कौल मुद्दा अलह का मोतबर होता है लिहाजा खावंद का कौल मोतबर है। वो फरमाते हैं इमाम जुफर, ये इसी तरह है जैसे मशरूत लहुल खियार। मैंने आपको बतलाया था कि बै के अंदर शरीयत ने इख्तियार दिया है खरीदार या बेचने वाला 3 दिन तक के लिए अपने पास इख्तियार रख सकते हैं बै को फसख करने का। जैद और अमर में बै हुई, एक बाय है एक मुश्तरी है, लेकिन दोनों में से एक कहता है भाई मैं बै तो तुम्हारे साथ कर रहा हूं लेकिन मुझे मसलन 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन के लिए इख्तियार है, मैं जरा सोच भी लूं अपने साथियों से मशवरा भी कर लूं, अगर ये मुनासिब मुझे बै मालूम हुई तो मैं इसकी इजाजत दे दूंगा वरना मैं 3 दिन के अंदर इसको रद्द कर सकता हूं। जितनी देर का भी ख्याल रखे 1 या 2 या 3 लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक ये इख्तियार हो सकता है। तो लिहाजा उसने अपने लिए इख्तियार रख लिया तो अब उसको इख्तियार है 3 दिन के अंदर बै फसख कर सकता है। तो यह इख्तियार बाय भी रख सकता है और मुश्तरी भी रख सकता है। तो जिसने खियार रखा उसको कहेंगे मशरूत लहुल खियार, वो आदमी जिसके लिए खियार की शर्त लगाई गई है। तो इमाम जुफर फरमाते हैं कि जो मशरूत लहुल खियार है मुद्दत गुजर गई, मुद्दत के गुजरने के बाद अब दूसरा आदमी कहता है कि लाओ भाई मबिया या पैसे मेरे हवाले करो, और मशरूत लहुल खियार कहता है भाई मैंने तो रद्द कर दिया था
जी।
मुद्दत के गुजरने के बाद वो जो इख्तियार वाली मुद्दत रखी थी 1 दिन रखा था या 2 दिन रखे थे या 3 दिन रखे थे उसके बाद अब ये झगड़ा हुआ है दोनों के अंदर, दूसरा आदमी क्या कह रहा है लाओ समनिया मबिया दो, और मशरूत लहुल खियार क्या कह रहा है मैंने मुद्दत के अंदर रद्द कर दी थी ये बै। तो यहां पर बिल इतफाक मशरूत लहुल खियार जो रद्द का दावा कर रहा है उसका कौल मोतबर नहीं, रद्द के दावा करने वाले का कौल मोतबर नहीं। तो यहां पर इस निकाह के मसले में भी ये बाकिरा लड़की रद्द का दावा कर रही है लिहाजा इसका भी कौल मोतबर नहीं होना चाहिए। जबकि हम कहते हैं कि ठीक है जाहिर के एतबार से औरत मुद्दाइया बन रही है और मर्द जो है मुद्दा अलह बन रहा है, लेकिन आकदों के अंदर एतबार माना का होता है, अल्फाज का और जाहिर का एतबार नहीं होता। और माना के एतबार से हमने गौर किया तो यह मर्द जो है निकाह का दावा कर रहा है और औरत निकाह का इनकार कर रही है। मर्द कहता है यह निकाह तुम पर लाजिम हो चुका, औरत कह रही है मेरे ऊपर यह लाजिम नहीं हुआ। तो मर्द हुआ मुद्दाई और औरत हुई मुद्दा अलह, लिहाजा औरत का कौल मोतबर है। और नीज आपने इसको कयास किया था मशरूत लहुल खियार पर, हम इसको कयास करते हैं मुदा पर जिसके पास अमानत रखवाई गई। एक आदमी ने दूसरे के पास अमानत रखवाई और फिर कुछ अरसे के बाद उसको कहता है कि भाई वो अमानत मेरे हवाले करो, वो कहता है भाई अमानत तो मैं आपको लौटा चुका हूं। तो देखो मुदा जिस यानी जिसके पास अमानत रखवाई गई थी वो रद्द का दावा कर रहा है और बिल इतफाक यहां मुदा का कौल मोतबर है। वजह यह कि माना के एतबार से आप देखें, माना के एतबार से आप देखें तो गोया मुद्दी जिसने अमानत रखवाई थी वो जमान का दावा कर रहा है कि मुझे तुमने अमानत नहीं लौटाई अब क्या देना पड़ेगा, जमान तुम्हें देना पड़ेगा। और मुदा कह रहा है मैं तो अमानत लौटा चुका हूं लिहाजा मेरे ऊपर कोई जमान नहीं आएगा। तो मुदा गोया जमान का मुतालबा कर रहा है और मुदा जो है वो इनकार कर रहा है, और कौल किसका मोतबर होता है मुनकिर का। इसलिए मुदा अगरचे रद्द कर रहा है लेकिन उसका कौल मोतबर है भाई। बात समझ में आ गई, क्योंकि एतबार मानी का होता है अकदों के अंदर। और बाकी जो आपने मसला खियार जिक्र किया था, मसला खियार के अंदर मशरूत लहुल का कौल इसलिए नहीं कबूल किया गया था क्योंकि जाहिर उसके खिलाफ था, क्योंकि जाहिर उसके खिलाफ था। जाहिर क्या था, झगड़ा कब हुआ है, मुद्दत के गुजरने के बाद। जब मुद्दत गुजर चुकी है फिर तो आकद को लाजिम हो जाना चाहिए। अब वो कह रहा है मैंने मुद्दत के अंदर रद्द किया था तो उसके इस कौल की तरफ नहीं देखा जाएगा क्योंकि जाहिर बतला रहा है कि यह अकद अब लाजिम होना चाहिए, क्योंकि झगड़ा कब हुआ है, मुद्दत के गुजरने के बाद जबकि इसका इख्तियार खत्म हो चुका है, लिहाजा अब इसके कौल की तरफ नहीं देखा जाएगा। तो मैंने फिर आपको जाब्ता बतलाया था कि याद रखो, कौल उसका मोतबर होता है जिसकी ताईद जाहिर कर रहा हो, जिसकी ताईद जाहिर कर रहा हो। तो ये तीन दिन गुजरने के बाद अब झगड़ा हुआ है, अब जाहिर क्या तकाजा कर रहा है कि मुद्दत खियार तो गुजर चुकी है, अब तो आकद को लाजिम होना चाहिए भाई, इसलिए मशरूत लहुल खियार का रद मोतबर नहीं है, दूसरे आदमी का कौल मोतबर है क्योंकि जाहिर उसकी ताईद कर रहा है। और मैंने बतलाया मसलन जाहिर जिसकी ताईद करे उसका कौल मोतबर होता है, मसलन जैद के पास एक गाड़ी है, दूसरे शख्स ने आकर दावा कर दिया कि यह गाड़ी मेरी है, तो अब दावा करने वाले के जिम्मे बयना, अगर वो गवाह पेश ना कर सका तो जैद की कसम पर काजी फैसला कर देगा, जैद कसम खाएगा कि वल्लाह काजी साहब ये गाड़ी इस आदमी की नहीं है भाई, नफी पर कसम खाएगा। और जाहिर देखो जैद का मुअय्यद है क्योंकि गाड़ी किसके कब्जे में है, जैद के कब्जे में है, तो जाहिर यही लग रहा है कि गाड़ी का मालिक जैद ही है, तो जाहिर जिसकी ताईद करता है उसका कौल मोतबर होता है। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। وَيَجُوزُ نِكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ إِذَا زَوَّجَهُمَا الْوَلِيُّ بِكْرًا كَانَتِ الصَّغِيرَةُ أَوْ سَيِّبًا। اب یہ ولایت اجبار کو بیان کر رہے ہیں، پہلے ولایت ندب کو بیان کیا، یعنی عاقلہ بالغہ لڑکی جو ہے ولی اس کا نکاح کرواتا ہے، ولی کو ولایت حاصل ہے تو اس کو ولایت ندب کہتے ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ یہ حقیقت میں یہ توکیل ہے، گویا لڑکی نے اس کو ولی کو اپنا وکیل بنایا ہوا ہے نکاح کا، یہاں پر ولی زبردستی نہیں کر سکتا، لڑکی اجازت دے گی تو نکاح ہوگا، وہ اجازت نہیں دے گی تو نکاح بھی نہیں ہوگا، یہ تھی ولایت ندب بھائی، تو اس کو ولایت کا نام دیا، حقیقت میں یہ وکالت ہے، یہ ولایت نہیں ہے بھائی۔ جبکہ اب ولایت اجبار کا حکم آیا، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ باپ جو ہے نابالغ بچوں کا جہاں چاہے اپنی مرضی سے نکاح کروا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں ولایت اجبار، کوئی ان بچوں سے پوچھنے کی اور ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، تو یہ ہے ولایت اجبار بھائی۔ تو اب ولایت اجبار کو بیان کرنے لگے ہیں، صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ ولایت اجبار کس پر حاصل ہوتی ہے اور کس کو حاصل ہوتی ہے، تو بتلائیں گے کہ ولایت اجبار صغیر اور صغیرہ یعنی نابالغ بچے اور نابالغ بچی پر حاصل ہوتی ہے، اور کس کو حاصل ہوتی ہے، تو یاد رکھو عند الاحناف عصبات کو حاصل ہوتی ہے، کس کو عصبات، یاد رکھو عصبات سے مراد عصبہ بھی نفسی ہی ہیں، یعنی وہ مرد جن کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں درمیان میں عورت کا واسطہ نہ آئے، وہ مرد جن کے ساتھ رشتے کے جڑنے میں درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آئے ان کو عصبات کہتے ہیں۔ جیسے کسی شخص کی مذکر اولاد ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، دیکھو یہ سب اس کی اولاد ہیں، اس کے جز ہیں بھائی، اور درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہیں، مثلا براہ راست اس کا بیٹا ہے، پھر بیٹے کا بیٹا ہے، پھر بیٹے کا بیٹا ہے، دیکھو درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہیں، تو نواسا اس میں داخل نہیں، کیونکہ نواسا وہ تو بیٹی کا بیٹا ہے، تو وہاں درمیان میں عورت کا رشتہ آ گیا۔ اور اپنے اطراف میں دیکھیں، مثلا بھائی، بھائی جو ہیں یہ عصبات میں داخل ہیں، وجہ یہ کہ ان کے ساتھ باپ کے واسطے سے رشتہ ہے، آپ کہیں گے یہاں تو عورت یعنی ماں بھی موجود ہے، ماں کے واسطے سے بھی ہے، تو جواب یہ کہ مرد کے واسطے سے رشتہ ہونا چاہیے، عورت اس کے علاوہ آ رہی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، یا یوں کہو کہ جب مرد کے واسطے سے رشتہ آ رہا ہے تو عورت کے واسطے کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو بھائی سے رشتہ کس کے واسطے سے ہے؟ باپ کے واسطے سے، تو بھائی بھی عصبہ ہوا۔ بھائی کا بیٹا، دیکھو یہاں بھی جب بھائی کے ساتھ رشتے میں کوئی عورت نہیں تو بھائی کے بیٹے کے ساتھ بھی کسی عورت کا بیچ میں واسطہ نہیں، پھر بھائی کا پوتا، پھر بھائی کا پڑپوتا، یہ سارے عصبات میں ہیں، توجہ ہے، بھائی کا بیٹا، بھائی کا پوتا ہے، اس سے کیسے رشتہ ہے؟ اس شخص کا پہلے رشتہ باپ سے، پھر باپ کے واسطے سے بھائی سے، پھر بھائی کے واسطے سے اس کے بیٹے سے، پھر اس بھائی کے بیٹے کے واسطے سے اس کے پوتے تک، تو دیکھو درمیان میں کہیں عورت کا واسطہ نہیں آ رہا۔ तो भाई और भाइयों की औलाद जो मुजक्कर औलाद है, ये सब भी किसमें दाखिल? असबात में। इसी तरह बाप के जो भाई हैं यानी चचा, चचा ये भी असबात में है। तवज्जो है, चचा के साथ किसके वास्ते से रिश्ता है? दादा के वास्ते से, क्योंकि बाप जैसे दादा की औलाद है इसी तरह चचा भी दादा की औलाद है। तो चचा से कैसे रिश्ता हुआ? पहले बाप आया बीच में, फिर दादा आया, फिर दादा से चचा की तरफ रिश्ता आ गया। देखो दरमियान में कोई औरत नहीं है। फिर इसी तरह चचा के मुजक्कर औलाद जो है, चचा का बेटा, चचा का पोता, चचा का पड़पोता, ये सारे असबात के अंदर दाखिल हैं। तो हमारे नजदीक सगीर और सगीरा पर विलायत इजबार हासिल है और तमाम असबात को हासिल है। अलबत्ता दर्जा ब दर्जा, यानी जो करीबी होगा उसको हक मिलेगा, दूर वाले इस विलायत से महरूम होंगे, उनको ये विलायत नहीं मिलेगी। जब बाप मौजूद है तो फिर भाई को विलायत हासिल नहीं, क्योंकि भाई से रिश्ता किसके वास्ते से? बाप के वास्ते से। तो खुद जब बाप मौजूद है तो उसको विलायत हासिल होगी, भाई को विलायत हासिल नहीं। तो हमारे नजदीक किस पर विलायत इजबार होती है? सगीर और सगीरा पर, नाबालिग और नाबालिगा पर। और किन को विलायत होती है? असबात को। और फिर इन असबात में भी तरतीब है। भाई बात समझ में आ गई? आखिर में फिर इंशाल्लाह साहिब हिदायत को जिक्र करेंगे, वहां मैं मजीद तफसील बयान कर दूंगा। बस इतना याद रखें, असबात वो मुजक्कर रिश्तेदार जिनके साथ रिश्ता जोड़ने में दरमियान में औरत का वासिता ना आए, इन सब को विलायत हासिल होती है। जबकि इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि विलायत इजबार सिर्फ बाप को हासिल है और किसी को नहीं हासिल, दादा को भी नहीं हासिल। जबकि इमाम शाफई रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि विलायत इजबार बाप और दादा को हासिल है, असबात में से और किसी और को हासिल नहीं। हमारे नजदीक विलायत इजबार तमाम असबात को मिलेगी, लेकिन अपने अपने मकाम पर। अव्वलन अगर बाप मौजूद है तो इसको हासिल है और किसी को हासिल नहीं। अगर बाप नहीं है तो फिर दादा को देखेंगे, दादा को विलायत इजबार होगी। अगर दादा भी न हुआ फिर उसके बाद परदादा को विलायत इजबार हासिल होगी, लेकिन अगर बाप मौजूद है फिर दादा या परदादा को विलायत इजबार नहीं होगी भाई। और फिर उसके बाद अगर बाप भी नहीं है, दादा परदादा भी नहीं है, तो फिर जो हकीकी भाई अगर है तो उसको विलायत हासिल होगी। भाई मौजूद है तो कोई और वली नहीं बनेगा, यही वली है। अगर भाई का भी इंतकाल हो चुका है तो भाई का जो बेटा है वो क्या है? असबा बनेगा। अगर वो भी नहीं है तो भाई का जो पोता है वो असबा बनेगा। अगर भाई की औलाद में से भी कोई नहीं है तो फिर चचा जो है वो असबा बनेगा। अगर चचा का भी इंतकाल हो चुका है तो फिर चचा का बेटा बनेगा। बात समझ में आ रही? तरतीब आगे मैं बयान करूंगा इंशाल्लाह पूरी तरतीब के किस तरतीब से ये होंगे। बस इतना याद रखें, हमारे नजदीक विलायत इजबार बाप और दादा के अलावा और असबात को भी मिलेगी जब बाप दादा वगैरह ना हो भाई। जबकि इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं विलायत इजबार सिर्फ बाप को हासिल है, जबकि इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बाप और दादा को सिर्फ हासिल है और किसी को विलायत इजबार हासिल नहीं। अब तफसील देखिए किताब पर। कहते हैं वयजूज़ु निकाहु सगीर व सगीरती इदा ज़व्वजहुम अलवली, के जायज है सगीर और सगीरा का निकाह, सगीर और सगीरा यानी नाबालिग बच्चा और नाबालिग बच्ची, उनका निकाह जायज है। इदा ज़व्वजहुम अलवली, जब वली इनका निकाह करवा दे, बिकरन कानति सगीरतु औ सय्यबा, ये सगीरा चाहे बाकिरा हो या सय्यबा। सगीरा क्या हो? चाहे बाकिरा हो चाहे सय्यबा। ये दरअसल इमाम शाफी रहमहुल्लाह का रद्द फरमा रहे हैं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नजदीक ये जो विलायत इजबार है ये लड़की के अंदर क्यों हासिल होती है? बकारत की वजह से। किसकी वजह से? बकारत की वजह से। लिहाजा वो सगीरा हो या बालिगा हो, जब बकारत उसमें है तो उस पर विलायत इजबार भी वली को हासिल है। और अगर वो सय्यबा हो चुकी है, मसलन सगीरा है और सय्यबा हो गई, सगीरा है और सय्यबा, मसलन सगीरा थी, बाप ने निकाह करवा दिए किसी से और उस आदमी ने बलूगत से पहले ही इसके साथ सोहबत कर ली, तो अब याद रखो ये सगीरा है, नाबालिगा है, लेकिन अब ये सय्यबा हो चुकी। तो ये सय्यबा हो चुकी और फिर मसलन खावन ने बाद में किसी वजह से तलाक दे दी, तो ये जो सगीरा सय्यबा है ये सगीरा सैयबा जो है इमाम शाफी ने मला फरमाते हैं इस पर विलायत इजबार हासिल नहीं बाप दादा को, वजह यह कि सैयबा हो चुकी है, इसमें विलायत इजबार की जो इल्लत थी बकारत वो अब मौजूद नहीं, तो लिहाजा बाप या दादा इसका जबरदस्ती निकाह नहीं करवा सकता, इसकी इजाजत जरूरी होगी। जबकि हमारे नजदीक विलायत इजबार की इल्लत सिगर है, नाबालिग होना, तो चाहे वो नाबालिगा सैयबा हो चाहे बाकिरा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिगर तो मौजूद है, नाबालिगा तो है, जब नाबालिगा है तो बाप और अवलिया को विलायत इजबार हासिल होगी, ये माना है। फिर तर्जमा देखिए भाई, वयजूज निकाहुस सगीरी व सगीरती इदा ज़व्वजहुमल वलीयु, और जायज है सगीर और सगीरा का निकाह जब वली इनका निकाह करवाए, बिकरन कानती सगीरतु व सैयबा, वो सगीरा चाहे बाकिरा हो या सैयबा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पर विलायत इजबार हासिल है हमारे नजदीक भाई। वल वलीयु वल असबतु, और वली जो है वो असबा है भाई, मैंने बतलाया हमारे नजदीक वली वो आसाबात हैं, यानी वो मर्द जिनके साथ रिश्ता जोड़ने में दरमियान में किसी औरत का वासिता ना आए भाई, आगे तफसील में बयान करूंगा कौन कौन है तरतीब के साथ भाई। व मालिकुन रहमहुल्लाह युखालिफुना फी गैरिल अबी, और इमाम मालिक रहमहुल्लाह हमारी मुखालिफत करते हैं बाप के अलावा में, यानी बाप में तो हम इख्तिलाफ नहीं करते, कहते हैं बाप को भी विलायत इजबार है, लेकिन बाकी दादा वगैरह और असबात के अंदर वो मुखालिफत करते हैं, वो कहते हैं कि और किसी को विलायत इजबार हासिल नहीं, सिर्फ बाप को हासिल है भाई। व शाफी रहमहुल्लाह फी गैरिल अबी वल जदी, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह हमारी मुखालफत करते हैं बाप और दादा के अलावा में, यानी बाप और दादा में वो भी मानते हैं इनको विलायत इजबार हासिल है, लेकिन औरों में इख्तिलाफ करते हैं कि और किसी को विलायत इजबार हासिल नहीं है भाई। वफी सैयब सगीरती ऐजान, और नीज वो सैयबा सगीरा के अंदर भी इख्तिलाफ करते हैं इमाम शाफी रहमहुल्लाह, हमारे नजदीक सैयबा सगीरा उस पर विलायत इजबार हासिल है क्योंकि सगीरा है, जबकि इमाम शाफी ने मलक के नजदीक बेशक सगीरा है लेकिन है तो सैयबा, और जब सैयबा है तो सैयबा पर विलायत इजबार किसी को नहीं होती भाई। तो कहते हैं वफी सैयबी सगीरती ऐजान, और वो सैयबा सगीरा के अंदर भी इख्तिलाफ करते हैं, आगे देखिए भाई। वजह कौल मालिक रहमहुल्लाह अन विलायत अल हुर्रत बेतबार हाजत वला हाजत लिन इदामी शहवा, इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं सिर्फ बाप को विलायत इजबार हासिल है सगीर या सगीरा पर और किसी को विलायत इजबार हासिल नहीं, अब उसकी दलील जिक्र कर रहे हैं। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो शरीयत किसी पर विलायत देती है किसी को, यह हाजत और जरूरत की वजह से देती है, जहां हाजत और जरूरत होगी वहां विलायत हासिल होगी, और जहां हाजत और जरूरत नहीं होगी वहां विलायत भी नहीं होगी, और कियास तो यह तकाजा करता है कि सगीर और सगीरा पर किसी को भी विलायत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हाजत नहीं है, वजह यह है कि इनमें शहवत नहीं है, जब शहवत नहीं है तो इनको निकाह की हाजत नहीं है, जब निकाह की हाजत नहीं है तो फिर बाप किसी को इन पर विलायत भी नहीं होनी चाहिए, कयास तो यह तकाजा करता है इन पर किसी को भी विलायत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां निकाह की कोई हाजत नहीं है क्योंकि इनमें शहवत नहीं है। हां अलबत्ता बाप को हमने खिलाफुल कियास विलायत दे दी क्योंकि वो नस से साबित है कि हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अपनी बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुजूर से करवाया 6 साल की उम्र में, कितनी उम्र में 6 साल की उम्र में निकाह करवाया, और 9 साल की उम्र में जब बालिगा हुई तो फिर रुखसती कर दी गई, तो देखो हजरत सिद्दीक ने अपनी नाबालिगा बेटी का निकाह करवाया और हुजूर ने इसको बरकरार रखा, तो कियास तो यह तकाजा करता है कि सगीर और सगीरा को निकाह की हाजत नहीं, जब हाजत नहीं तो किसी को इन पर विलायत नहीं होनी चाहिए, हत्ता के बाप को भी इन पर विलायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन खिलाफुल कियास नस के जरिए सगीर और सगीरा पर बाप की विलायत साबित है, तो हमने बाप के लिए यह विलायत साबित कर दी खिलाफुल कियास नस की वजह से, और जो चीज खिलाफुल कियास होती है वो अपने मौरिद पर बंद होती है, लिहाजा नस में सिर्फ बाप के लिए यह विलायत साबित है तो सिर्फ बाप के लिए ही यह विलायत साबित होगी, दादा वगैरह और किसी के लिए यह विलायत साबित नहीं होगी, बात समझ में आ गई। वजह कौली मालिक इन रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह के कौल की वजह यह है कि अनल विलायत अलल हुर्रति बेतबारिल हाजती, कि हुर्रा यानी आजाद औरत पर जो विलायत होती है वो हाजत के एतबार से होती है, वला हाजत अल इनदामी शहवती, और कोई हाजत नहीं है यहां पर शहवत न होने की वजह से, सगीर और सगीरा में तो कोई शहवत नहीं, लिहाजा कियास के मुताबिक तो किसी को इन पर विलायत नहीं होनी चाहिए, इन्हें निकाह की हाजत नहीं है भाई। इल्ला अन्न विलायत अल अबी सबतत नस्सन बिखिलाफिल कियासी, मगर यह कि बाप की विलायत वो साबित है नस्सन, नस के एतबार से यानी नस से साबित है, बिखिलाफिल कियासी खिलाफुल कियास तरीके पर, खिलाफुल कियास तरीके पर यह बाप की विलायत नस से साबित है। वल जद्दु लैसा फी मानाहू, और दादा जो है वो तो बाप के माना में नहीं है, यानी दादा के अंदर उतनी शफकत नहीं होती जितनी बाप के अंदर शफकत होती है। फला युल्हकु बिही, लिहाजा दादा को बाप के साथ नहीं मिलाया जाएगा, यह विलायत दादा को भी नहीं मिलेगी। यह माना है वल जद्दु लैसा फी मानाहू, और दादा जो है वो बाप के माना में नहीं है, यानी उसकी तरह शफकत करने वाला नहीं है। फला युल्हकु बिही, लिहाजा दादा को बाप के साथ नहीं मिलाया जाएगा इस हुक्म में, तो दादा को विलायत नहीं होगी। कुल ना, हम कहते हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह को अब जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया, कुल ना हम कहते हैं ला बल हुआ मुआफिकुल लिल कियासी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं कि सगीर और सगीरा में शहवती नहीं है तो उनके निकाह की कोई हाजत नहीं, जब निकाह की कोई हाजत नहीं तो किसी को विलायत नहीं होनी चाहिए, और अगर बाप के लिए विलायत साबित भी हुई है वो खिलाफुल कियास तरीके से नस से साबित हुई है। हम कहते हैं नहीं, बल्कि सगीर और सगीरा पर विलायत का होना यह कियास के मुआफिक है, कियास भी इसकी ताइद करता है कि इन पर बाप दादा को विलायत होनी चाहिए। देखिए भाई, कुल ना लाल, हम कहते हैं नहीं, बल हुआ मुआफिकुल लिल कियासी, बल्कि ये सबूत विलायत जो है ये कियास के मुताबिक है। लिअन्न निकाह यतज़म्मनुल मसालिहा, इसलिए क्योंकि निकाह जो है वो मुतज़म्मिन होता है मसलहतों को, निकाह बहुत सी मसलहतों पर मुश्तमिल होता है, सिर्फ शहवत पूरा करना ही उसमें मकसूद नहीं होता, बल्कि घर बसाना भी मकसूद है, औलाद का हुसूल भी मकसूद है, खानदान आबाद करना, एक नया खानदान बनाना भी मकसूद है, घर का निजाम चलाना भी मकसूद है, जिंदगी के अंदर इत्मीनान और सुकून भी मकसूद है। तो निकाह की बहुत सारी मसलहतें हैं, सिर्फ शहवत इसका मकसद नहीं है। तो कहते हैं लिअन्न निकाह यतज़म्मनुल मसालिहा, इसलिए क्योंकि निकाह जो है वो मुतज़म्मिन होता है मसलहतों को। वला ततवफ्फरु इल्ला बैनल मुतकाफी ऐन आदतन, वला ततवफ्फरु, तवफ्फुर का माना होता है मुहैया होना, मौजूद होना, यानी उनको हासिल होना। वला ततवफ्फरु, और ये मसलहतें हासिल नहीं होती इल्ला बैनल मुतकाफी ऐनी, मगर वो जो दो हम पल्ला हो, हम मर्तबा हो आदतन। भाई देखो, निकाह की बहुत सी मसलहतें हैं, लेकिन ये मसलहतें तभी हासिल होंगी जब मियां बीवी हम पल्ला हो, बराबर के हो, एक जैसे खानदानों से ताल्लुक हो, एक जैसा मिजाज हो, तो फिर ही वो सारी निकाह की मसलहतें हासिल होंगी भाई। और अगर दोनों के मिजाज ही नहीं मिलते, दोनों हम पल्ला ना हो, तो फिर निकाह की मसलहतों का हासिल होना दुश्वार है। तो निकाह के लिए दोनों का हम पल्ला होना जरूरी है, और हम पल्ला का मिलना आसान नहीं होता, लिहाजा बाप को विलायत होनी चाहिए कि जहां कहीं उसको हम पल्ला रिश्ता मिल जाए वो बचपन में ही रिश्ता करवा सके, क्योंकि बड़े होने के बाद पता नहीं हम पल्ला रिश्ता मिलता है या नहीं मिलता। बात समझ में आ रही है? क्या हासिल कलाम क्या कि हमारे नजदीक सगीर और सगीरा को भी निकाह की हाजत है, क्योंकि ये भी मोहताज है निकाह की मसलहतें हासिल करने के, कि ये बड़े होकर इनको भी निकाह की मसलहतें हासिल हों, और निकाह की मसलहतें तो हम पल्ला और हम रुतबा लोगों में यानी बराबर के लोगों में ही मिलती हैं, और बराबर का रिश्ता तो हमेशा नहीं मिलता, लिहाजा बाप दादा को विलायत होनी चाहिए कि बचपन में ही अगर हम पल्ला रिश्ता मिल गया है तो निकाह करवा सकें, ताकि आगे जिंदगी में इनको निकाह की फिर मसलहतें हासिल हो जाएं। अगर बाप दादा को आप विलायत नहीं देंगे तो ये रिश्ता तो हाथ से निकल जाएगा, फिर बाद में पता नहीं ऐसा हम पल्ला और बराबर का रिश्ता मिलता है या नहीं मिलता। तो लिहाजा कियास भी क्या तकाजा करता है कि बाप दादा को ये विलायत हासिल होनी चाहिए। फिर देखिए तर्जमा, कुल ना, हम कहते हैं ला बल हुआ मुआफिक लिल कियास, बल्कि ये सबूत विलायत कियास के मुआफिक है। लिअन्ना निकाह यतज़म्मनुल मसालिह, इसलिए क्योंकि निकाह जो है मसलहतों पर मुश्तमिल होता है। वला ततवफ्फरु इल्ला बैनल मुतकाफ़िअन आदतन, और ये मसलहतें जो हैं हासिल नहीं होती मगर आदतन दो हमपल्ला लोगों के दरमियान ही। वला यत्तफिकुल कुफ उफी कुल्ली ज़मानिन, और इत्तेफाक नहीं होता कुफ का हर जमाने में, यानी ऐसा इत्तेफाक नहीं होता कि कुफ हर जमाने में मिल जाए। फासबतना विलायत फी हालति सिगरी इहराज़न लिल कुफी, फासबतना विलायत तो हमने विलायत साबित कर दी, फी हालति सिगरी, सिगर यानी बचपन की हालत में भी हमने विलायत साबित कर दी बाप दादा के लिए। इहराज़न लिल कुफ़ी, इहराज का माना है जमा करना, समेटना, महफूज करना। इहराज़न लिल कुफ़ी, कुफ़ को समेटने के लिए, कुफ़ को महफूज करने के लिए, कि कुफ़ मिल गया है, बचपन में मिल गया है, बस निकाह कर दो ताकि ये महफूज हो जाए। भाई बात समझ में आ जाए। आगे देखिए भाई, वजह कौल शाफिई रहिमहुल्लाहु अन्न नजर ला यतिम्मु बितफवीज़ इला गैरिल अबी वल जद्द लिकुसूरि शफ़क़तिही व बुअद क़राबतिही। अब इमाम शाफी रहमहुल्लाह के कौल की वजह जिक्र कर रहे हैं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बाप और दादा को विलायत हासिल होगी और किसी को विलायत हासिल नहीं। वो फरमाते हैं कि अगर बाप और दादा के अलावा औरों को विलायत दे दी जाए तो इसमें सगीर और सगीरा पर शफकत नहीं है। वजह यह कि बाप और दादा का तो करीबी रिश्ता है और बाकी बाप और दादा के वास्ते से जिनके साथ रिश्ता है, मसलन भाई है, भाई के साथ बाप के वास्ते से रिश्ता है, चचा है, चचा के साथ दादा के वास्ते से रिश्ता है, तो अगर ये विलायत इजबार औरों को दी जाएगी तो इसमें सगीर और सगीरा पर शफकत नहीं है। इसलिए क्योंकि जो बाकी रिश्तेदार हैं ये दूर के रिश्तेदार हैं तो इनमें शफकत की कमी होती है, इनमें तो जब दूर के रिश्तेदार हैं इनमें शफकत की कमी है, लिहाजा इनको विलायत इजबार नहीं होनी चाहिए सगीर और सगीरा पर। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वजह कौल शाफिई रहिमहुल्लाह, इमाम शाफी रहमहुल्लाह के कौल की वजह यह है कि अन नजर ला यतिम्मु बितफवीज़ इला गैरिल अबी वल जद्दी। अन नजर, नजर कहते हैं शफकत को, कि अन नजर ला यतिम्मु, कि शफकत ताम नहीं होती यानी कामिल नहीं होती, बितफवीज़ इला गैरिल अबी वल जद्दी, बाप और दादा के अलावा सुपुर्द करने में, यानी बाप और दादा के अलावा को अगर आप ये विलायत इजबार सुपुर्द करेंगे तो सगीर और सगीरा पर शफकत कामिल नहीं। क्यों? कहते हैं लिकुसूरी शफकती ही व बुअद क़राबती ही। कुसूर का माना कमी, शफकत, याद रखो उर्दू में शफकत फा के सुकून के साथ है, अरबी में फा के फतहा के साथ है, इस वजह से कि बाकियों के अंदर शफकत की कमी है। वह बुअद क़राबती ही, और उनमें रिश्तेदारी की दूरी है, यानी वो दूर के रिश्तेदार हैं, वो बाप और दादा के वास्ते से रिश्तेदार हैं, तो दूर के हुए, जब वो दूर के हैं तो उनकी शफकत में भी कमी होगी। बाप और दादा की तो शफकत कामिल है, बाप और दादा की शफकत तो कामिल है, बाप अपनी औलाद पर बे इंतहा शफकत करता है और दादा जो है वो भी जैसे अपनी औलाद पर शफकत करता है, अपनी औलाद की औलाद जो है उन पर भी वो बे इंतहा शफकत करता है। भाई तो कहते हैं इमाम शाफी रहमहुल्लाह के कौल की वजह यह है कि अन नजर ला यतीम बितफवीज़ इला गैरिल अबी वल जद्दी, कि बाप और दादा के अलावा अगर ये विलायत सुपुर्द की जाए तो फिर इन सगीर और सगीरा पर शफकत ताम नहीं होगी, लिकुसूरी शफकत ही व बुअद क़राबती ही, इसलिए क्योंकि बाप और दादा के अलावा जो है उनकी शफकत में भी कमी है और उनके रिश्ते में भी दूरी है। वलिहादा ला यमलिकु तसर्रुफ़ फिल माली। भाई याद रखिए, याद रखिए, इंदल अहनाफ सगीर या सगीरा के माल में सिर्फ बाप या दादा को तसर्रुफ का हक होता है और किसी को तसर्रुफ का हक नहीं। बाप और दादा वो इनके माल को जहां इनका फायदा हो वहां खर्च कर सकते हैं। सगीर या सगीरा का निकाह करवाना है तो इंदल अहनाफ बाप दादा और अवलिया जो भी हो वो इनका निकाह करवा सकते हैं जहां चाहें, लेकिन माल के अंदर जो तसर्रुफ है वो सिर्फ बाप और दादा को ये विलायत हासिल है वो कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि देखिए एक है जान और एक है माल, किसका दर्जा आला, जान का दर्जा आला है, माल तो जान को बचाने के लिए होता है, तो लिहाजा जान का दर्जा आला है। तो जब ए अहनाफ आप माल के अंदर जो विलायत है, जो कम दर्जे वाली विलायत है, वो आप बाप दादा के अलावा किसी और को नहीं देते, तो जान के अंदर जो विलायत आला दर्जे की है वो आप कैसे दे सकते हैं और अवलिया को? बात समझ में आ गई? क्या मजहब हुआ अहनाफ के नजदीक सगीर या सगीरा के माल में सिर्फ बाप और दादा को तसरुफ का हक है, किसी और को तसरुफ का हक नहीं? तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ए अहनाफ, अजीब बात है, आप माल जो कम दर्जे का है उसमें तो सिर्फ बाप और दादा को तसरुफ का हक देते हैं, किसी और को तसरुफ का हक नहीं देते, और जान जो उससे कीमती है उसके अंदर आप तसरुफ का हक बाप और दादा के अलावा औरों को भी देते हैं। हालांकि जब माल के अंदर और अवलिया को तसरुफ का हक नहीं है तो फिर जान जो आला दर्जे की है उसमें बतरीके औला और अवलिया को तसरुफ का हक नहीं होना चाहिए और अवलिया को विलायत इजबार नहीं मिलनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वलिहादा ला यमलिकु तसरुफ फिल माली, और इसीलिए बाप और दादा के अलावा और जो अवलिया हैं वो सगीर या सगीरा के माल में तसरुफ के मालिक नहीं हैं। मा अन्नहु अदना रुतबतन, बावजूद इसके कि माल कम दर्जे वाला है। फली अल्ला यमलिका तसरुफ फिल नफ्सी, तो ये कि वो नफ्स के अंदर भी तसरुफ के मालिक ना हो। व अन्नहु आला, जरा इसको छोड़ दें, औला पर आ जाए, औला तो ये ज्यादा लायक है। भाई फिर तर्जमा देखिए, व अन्नहु आला को जरा निकाल दें, इसको इसके अलावा इबारत देखें, वलिहादा ला यमलिकु तसरुफ फिल माली, इसीलिए बाप और दादा के अलावा और अवलिया जो हैं वो सगीर और सगीरा के माल में तसरुफ के मालिक नहीं। मा अन्नहु अदना रुतबतन, हालांकि माल तो कम दर्जे वाला है। फली अल्ला यमलिका तसरुफ फिल नफ्सी, तो ये कि वो बाप और दादा के अलावा जो अवलिया हैं वो सगीर और सगीरा के नफ्स में भी तसरुफ के मालिक ना हो, औला ये ज्यादा लायक है। जब माल में वो तसरुफ के मालिक नहीं है तो नफ्स में बतरीके औला वो तसरुफ के मालिक नहीं होने चाहिए। और दरमियान में बताया वह अन्नहु आला, और हाल यह है कि यह तसरुफ फी नफ्स तो आला है भाई जी। बात समझ, ये आला है तो इसमें बतरीके औला उनको विलायत हासिल नहीं होनी चाहिए। वलाना, अब जवाब दे रहे हमारी तरफ से, वलाना अन्नल कराबत दाइयतुन इलन नजरी, हम जवाब देते हैं कि ये जो असाबात हैं इनकी उस सगीर या सगीरा के साथ रिश्तेदारी है, और ये जो रिश्तेदारी है ये शफकत की तरफ दावत देती है। इंसान अपने रिश्तेदारों पर शफकत करता है, जैसे कि बाप और दादा, बाप और दादा देखो रिश्तेदार हैं ना, इसीलिए ये शफकत करते हैं अपनी औलाद पर। तो रिश्तेदारी शफकत की तरफ दावत देती है जैसे बाप और दादा में है। हां लेकिन आपकी बात ठीक है, बाप और दादा में शफकत कामिल और बाकियों में शफकत कम दर्जे की है। तो हमने इस शफकत के अंदर जो कमी है उसको इस तरह जाहिर किया कि बाप और दादा को हमने विलायत इल्जाम दे दी और बाकियों को हमने विलायत इल्जाम न दी। याद रखो, बाप और दादा जब सगीर या सगीरा का निकाह कर दें तो फिर ये बालिग होने के बाद भी उस निकाह को फसख नहीं कर सकते। यानी बाप और दादा को विलायत इल्जाम है, ये निकाह कर देंगे तो वो लाजिम हो गया, इन्होंने लाजिम कर दिया, अब उसके फसख की कोई सूरत नहीं। वो सगीर या सगीरा बालिग होने के बाद भी उनको इख्तियार नहीं होगा इसको फसख करने का, जब ये निकाह बाप दादा ने करवाया हो। जबकि बाप दादा के अलावा जो और अवलिया हैं वो जब निकाह करवाते हैं तो उनको विलायत इल्जाम नहीं हासिल, यानी वो जो निकाह करवाएंगे वो सगीर या सगीरा पर लाजिम नहीं हुआ, जब वो बालिग हों तो वो इसको फसख कर सकते हैं। तो बाप और दादा का करवाया हुआ निकाह लाजिम क्योंकि इनको विलायत इल्जाम हासिल है, और अवलिया का करवाया हुआ निकाह लाजिम नहीं क्योंकि इनको विलायत इल्जाम हासिल नहीं है। तो हम जवाब दे रहे हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह को, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि बाप और दादा के अलावा बाकियों में शफकत कम है। हम कहते हैं हां हमें भी तस्लीम है बाकियों में शफकत कम है, और हमने उसका इजहार भी कर दिया, उसको जाहिर भी कर दिया शरीय अहकाम के अंदर, इस तरह के बाप और दादा को हमने विलायत इल्जाम दे दी और बाकियों को हमने विलायत इल्जाम नहीं दी। तो लिहाजा बाप और दादा निकाह करवाएंगे वह लाजिम हो जाएगा, लेकिन बाकियों ने निकाह करवाया तो उनमें शफकत की में कमी थी, तो हो सकता है उन्होंने निकाह की मसलहतों का पूरा ख्याल ना रखा हो, तो कोई हर्ज नहीं, तलाफी हो सकती है। जब ये सगीर या सगीरा बालिग हों इस निकाह को फसख कर दें, इनको इख्तियार दे दिया शरीयत ने, तो वो तलाफी हो जाएगी। वो जो खलल और खराबी आई थी शफकत में कमी की वजह से वो तलाफी हो जाएगी। देखिए भाई, वलाना अन्नल कराबत दाइयतुन इलन नजरी, और हमारी दलील यह है कि जो रिश्तेदारी है ये नजर और शफकत की तरफ दावत देने वाली है। कमा फिल अबी वल जद्दी, जैसे बाप और दादा में है। बाप और दादा क्यों शफकत करते हैं? क्योंकि रिश्तेदार हैं भाई। हां अलबत्ता वमा फीही मिनल कुसूरी, और वो अवलिया जिनकी शफकत के अंदर कमी है, अजहर ना हो, हमने उस कमी को जाहिर कर दिया, फी सल्बी विलायतिल इल्जामी, विलायत इल्जाम के सल्ब में, यानी हमने उनसे विलायत इल्जाम सल्ब कर ली। सल्ब का माना है नफी करना। बाप और दादा को हमने विलायत इल्जाम दे दी, ये निकाह करवाएंगे वो लाजिम हो गया क्योंकि इनकी शफकत कामिल है, बाकियों के अंदर शफकत में कमी है, लिहाजा वो निकाह करवाएंगे तो वो निकाह लाजिम नहीं होगा, उसकी तलाफी हो सकती है कि वो बड़े होकर बालिग होकर उस निकाह को फसख कर दें। तो लिहाजा जिनमें विलायत की कमी थी हमने वहां उस कमी को जाहिर कर दिया। किस तरह? कि उनसे विलायत इल्जाम का सल्ब कर दिया, उनसे विलायत इल्जाम की नफी कर दी कि बाप और दादा के अलावा किसी और को विलायत इल्जाम हासिल नहीं है। तो ये जो विलायत इल्जाम की हमने नफी की, ये किस वजह से की? क्योंकि उनकी शफकत में कमी है भाई। ये माना है, कहते हैं वमा फीही मिनल कुसूरी, और वो बाप दादा के अलावा और अवलिया जिनकी शफकत में कमी है, अजहर ना हुफी सल्बी विलायत इल्जामी, तो हमने भी इस कमी को जाहिर कर दिया विलायत इल्जाम की नफी करने में, कि उसकी हमने नफी कर दी, बिखिलाफ तसर्रुफ फिल माल। अब वो जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने दलील दी थी कि ए अहनाफ, एक है तसर्रुफ फिल माल, एक है तसर्रुफ फिल नफ्स, यानी निकाह करवाना, और तसर्रुफ फी नफ्स ये आला दर्जे का है कि आप उसकी जान उसकी जात के अंदर तसर्रुफ कर रहे हैं, और तसर्रुफ फिल माल वो अदना दर्जे का है, क्योंकि माल जो है वो तो जात की हिफाजत के लिए होता है। माल किस लिए होता है? जात की हिफाजत के लिए और उसको बचाने के लिए होता है। तो ए अहनाफ, तसर्रुफ फी नफ्स हुआ आला और तसर्रुफ फिल माल है अदना, तो आपने जो अदना है तसर्रुफ फिल माल वो तसर्रुफ बाप दादा के अलावा किसी और को नहीं दिया, तो तसर्रुफ फिल नफ्स जो आला है वो भी बाप दादा के अलावा किसी और को नहीं मिलना चाहिए। तो अब उसका जवाब दे रहे हैं साहिबे हिदाया भाई, साहिबे हिदाया जवाब देंगे कि भाई तसर्रुफ फिल नफ्स जो है वहां तो तलाफी की सूरत थी, निकाह करवा देंगे और अवलिया, लेकिन बालिग होते ही सगीर या सगीरा को निकाह फसख करने का इख्तियार मिल जाएगा। तो तसर्रुफ नफ्स के अंदर तो अगर कोई खलल आ जाए वहां पर तलाफी की सूरत है कि वो बालिग होकर निकाह को फसख कर दें, लेकिन अगर माल के अंदर तसर्रुफ की इजाजत दी जाए वहां तो तलाफी की कोई सूरत नहीं है, लिहाजा इसलिए हमने वहां बाप दादा के अलावा किसी और को तसर्रुफ माल नहीं दिया भाई, क्योंकि वहां तलाफी की कोई सूरत नहीं है भाई। देखिए कहते हैं बिखिलाफ तसर्रुफ फिल माली, बखिलाफ तसर्रुफ फिल माल के, लिअन्नहु यतकररु, इसलिए क्योंकि जो तसर्रुफ फिल माल होता है यह मुकर्रर होता है, फला युमकिनु तदारुकुल खलली, लिहाजा यहां जो खलल और खराबी आएगी उसकी तलाफी मुमकिन नहीं है। भाई देखिए, ये जो तसर्रुफ फिल माल है यहां तलाफी की सूरत नहीं, वजह यह कि यह तसर्रुफ फिल माल मुकर्रर होता है। मसलन सगीर या सगीरा की जमीन है, जायदाद है, जायदाद है, अब अगर इसको आगे बेचा जाएगा तो अगर वहां खलल और खराबी आई, यानी अच्छी कीमत नहीं मिल रही थी फिर भी बेच दिया, तो फिर वहां तलाफी की कोई सूरत नहीं, इसलिए क्योंकि यह जमीन वापस नहीं आ सकती। जो खरीदने वाला होगा वो कुछ दिन के बाद फिर उसको आगे जहां अच्छी कीमत मिलेगी वो उसको बेच देगा, फिर अगला खरीदार जो है वो उसको भी जहां अच्छी कीमत मिलेगी वो आगे बेच देगा। तो देखो ये जो तसर्रुफ फिल माल है ये मुकर्रर होता है, चीज एक हाथ से अगले हाथ में निकलती है फिर उससे अगले हाथ में मुंतकिल होती चली जाती है, लिहाजा वहां तलाफी की कोई सूरत नहीं। और हम ये भी नहीं कर सकते कि जिसको बेच रहे हैं उसको कह दें कि आपने आगे नहीं बेचना इसको, ये सगीर और सगीरा जब बालिग हो जाएंगे ताकि ये अगर इस हकत को फसख करना चाहें तो फसख भी कर सकें, भाई फिर तो वो खरीदेगा ही नहीं, जब वो आगे नहीं बेच सकता तो उसको खरीदने का क्या फायदा भाई। लिहाजा मालूम हुआ तसर्रुफ फिल माल जो है वो मुकर्रर होता है और वहां फिर तलाफी की कोई सूरत नहीं रहती। तो लिहाजा ये तसर्रुफ फिल माल की विलायत उनको सिर्फ मिलनी चाहिए जिनको विलायत इल्जाम हासिल है, यानी जहां शफकत कामिल हो, यानी जो आकद कर दें तो वह नाफिज हो जाए, फिर वहां फसख की जरूरत न पड़े। और वह विलायत इल्जाम तो सिर्फ बाप और दादा को हासिल है, इसलिए हमने तसर्रुफ फिल माल की विलायत भी सिर्फ बाप और दादा को दी है, और बाकियों के अंदर चूंकि शफकत के अंदर कमी थी तो हमने उनको विलायत इल्जाम नहीं दी थी। जब उनको विलायत इल्जाम नहीं मिली तो अब उनको विलायत फिल माल भी नहीं मिलेगी, इसलिए क्योंकि तसर्रुफ नफ्स के अंदर जो खलल आता था उसकी तो तलाफी हो सकती थी, लिहाजा वो विलायत बाकी औलिया को दे दी। लेकिन तसर्रुफ माल के अंदर जो खलल आ जाए तो वहां चूंकि तलाफी की कोई सूरत नहीं होती, लिहाजा हमने इसलिए वो विलायत और औलिया को नहीं दी। बात समझ में आ गई। देखिए भाई किताब पर कहते हैं बिखिलाफ तसर्रुफ फिल माल, बखिलाफ तसर्रुफ फिल माल के लिए अन्नहु यतकररु, इसलिए क्योंकि जो तसर्रुफ फिल माल होता है यह मुकर्रर होता है, चीज एक हाथ से निकलती है दूसरे में और तीसरे में चली जाती है भाई, तो लिअन्नहु यतकररु, तो ये जो तसर्रुफ फिल माल होता है इसमें तकरार होता है, फला युमकिनु तदारुकुल खलली, तो लिहाजा इसलिए मुमकिन नहीं है कि उस खलल और खराबी की तलाफी हो जाए। तसर्रुफ नफ्स के अंदर खराबी आ जाए तो वहां तो तलाफी हो सकती है कि फसख का इख्तियार दे दिया, लेकिन तसर्रुफ माल के अंदर अगर खराबी आ जाए तो उसकी तलाफी की कोई सूरत नहीं है। ये माना है फला युमकिनु तदारुकुल खलली, तो मुमकिन नहीं है खलल और खराबी की तलाफी माल के अंदर, फला तुफीदुल विलायतु इल्ला मुलजिमतन, तो माल के अंदर जो है वो विलायत फायदा नहीं देगी, इल्ला मुलजिमतन, मगर वो विलायत जो लाजिम करने वाली है, यानी विलायत इल्जाम ही फायदा देगी जहां खलल आता ही नहीं, तो ये माना है फला तुफीदुल विलायतु इल्ला मुलजिमतन, तो लिहाजा ये तसर्रुफिल माल जो है इसके अंदर विलायत फायदा नहीं देती, इल्ला मुलजिमतन, मगर इस हाल में कि वो विलायत जो है लाजिम कर देने वाली हो, वह माल कसूर इला यसबुतु विलायतुल इल्जामी, और शफकत में कमी के साथ तो विलायत इल्जाम साबित नहीं होती, इसीलिए हमने कहा कि बाप और दादा उनको विलायत इल्जाम है क्योंकि शफकत कामिल है, और बाकियों में शफकत कामिल नहीं तो उनको विलायत इल्जाम भी नहीं, और जब उनको विलायत इल्जाम नहीं तो उनको तसर्रुफ फिल माल का हक भी नहीं होगा, वरना तो उस खलल की तलाफी न हो सकेगी। भाई आगे देखिए वजह कौली ही फिल मसअलती सानियती, भाई इमाम शाफी रहमतुल्लाह से हमारा दूसरा इख्तिलाफ जो है वो सय्यिबा सगीरा के बारे में था। पहला इख्तिलाफ तो क्या था कि हमारे नजदीक बाप और दादा के अलावा और भी औलिया हैं जिनको विलायत इजबार हासिल होती है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, औरों को विलायत इजबार हासिल नहीं, सिर्फ बाप और दादा को हासिल है। दूसरा इख्तिलाफ यह था कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक सय्यिबा सगीरा जो है यानी एक नाबालिग लड़की है और ये सय्यिबा है, कैसे, मसलन बाप या दादा ने इसका निकाह करवा दिया था और ये सगीरा थी और इसके खावन ने इसके सिगर में ही इससे सोहबत कर ली तो ये सय्यिबा हो गई, और बाद में किसी वजह से उसने तलाक दे दी, तो अब ये जो सय्यिबा सगीरा है हमारे नजदीक इस पर भी विलायत हासिल है
जी।
औलिया को इस पर भी विलायत हासिल है, ये अगरचे सय्यिबा है लेकिन है तो सगीरा और सगीरा ना समझ होती है, लिहाजा औलिया इसका निकाह करवा सकते हैं, उनको विलायत इजबार हासिल है। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि निकाह एक अजीम चीज है, ये दो चार दिन की बात नहीं जिंदगी भर का मामला है, लिहाजा इसके लिए जरूरी है कि निकाह करने वाला तजर्बाकार होना चाहिए, और बाकेरा को तो निकाह को कोई तजर्बा नहीं होता, लिहाजा उसको अपना निकाह करवाने की इजाजत नहीं है, वली उसका निकाह जहां चाहे करवा सकता है, वली को उस पर विलायत इजबार हासिल है। और ये जो सय्यिबा सगीरा है ये तो सय्यिबा हो चुकी है, इसको एक दफा मर्द का तजर्बा हो चुका है, लिहाजा इसको कुछ ना कुछ निकाह की समझ आ गई, जब इसको समझ आ गई इसको तजर्बा हो गया तो अब यह निकाह जैसे मामले का फैसला कर सकती है, ये क्या कर सकती है, निकाह जैसे मामले का फैसला कर सकती है। चुनाचे वो फरमाते हैं सय्यिबा सगीरा जो है इस पर किसी को विलायत इजबार हासिल नहीं, इसको एक दफा निकाह का तजर्बा हो चुका है, लिहाजा अब इससे इजाजत लेना जरूरी है, इसकी इजाजत के बगैर कहीं इसका निकाह जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। जबकि हमारे नजदीक यह है तो सगीरा अगरचे सईबा है, लिहाजा इस पर भी विलायत इजबार औलिया को हासिल होगी। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वजह कौली ही फिल मसअलती सानियती, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के कौल की वजह दूसरे मसले में, दूसरा मसला, पहला इख्तिलाफ किस में था कि विलायत इजबार तमाम अवलिया को है हमारे नजदीक, उनके नजदीक सिर्फ बाप और दादा को, और दूसरा मसला जो था कि सैयबा सगीरा पर विलायत इजबार हमारे नजदीक है उनके नजदीक नहीं है, वो जिक्र कर रहे हैं। तो कहते हैं वजह कौली ही फिल मसअलती सानियती, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के कौल की वजह दूसरे मसले में यह है कि अन सियाबता, सियाबा यानी सैयबा होना, कि सैयबा होना सबबुन लिहुदूसिर राय, यह सबब है राय के बनने का, सैयबा होना राय के बनने का सबब है, यह सैयबा है, मालूम हुआ इसकी कुछ राय बन चुकी होगी निकाह के बारे में, इसको निकाह की समझ आ चुकी होगी, लिवजूद इल मुमारसती, तजर्बा पाए जाने की वजह से, कि इसको मर्द का तजर्बा हो चुका है तो इसकी कुछ राय बन गई होगी। बात समझ में आ गई। आप देखो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक जो तजर्बाकार होगा, जिसको समझ होगी, उस पर किसी को विलायत इजबार हासिल नहीं होगी, और यह सैयबा जो है यह भी तजर्बाकार हो चुकी है निकाह के मामले में, इसको समझ आ चुकी है निकाह के मामले की, लिहाजा इस पर किसी को विलायत हासिल नहीं होगी क्योंकि इसकी राय बन चुकी है, इसको समझ आ चुकी है। लेकिन समझ का आना या ना आना यह तो एक बातिनी चीज है, जाहिर में तो पता नहीं चलेगा कि इसको एक बात की समझ आ गई है, इसकी अकल आ गई है, इतनी अकल नहीं आई, ये तो एक अमरे बातिनी है। और जब हुक्म की इल्लत अमरे बातिनी हो जिस पर मुत्तले होना दुश्वार हो, तो फिर याद रखो हुक्म का मदार सबब पर कर दिया जाता है, हुक्म का मदार सबब पर कर दिया जाता है। जब एक हुक्म की इल्लत का पता न चल सके तो हुक्म का मदार जो है वो सबब पर कर दिया जाता है। जैसे देखो नींद, नींद की वजह से इंसान के आज़ा और बदन ढीला पड़ जाता है, और नींद की वजह से उमूमन खुरूज निजासत हो गई यानी हवा खारिज होगी, लेकिन चूंकि इंसान सोया हुआ है उसको पता नहीं चलेगा, तो ये खुरूज निजासत की वजह से उसका वजू टूटेगा। तो यहां देखो वजू टूटने की जो इल्लत है वो खुरूज निजासत है, लेकिन इस खुरूज निजासत पर मुत्तले होना दुश्वार है, मुमकिन नहीं है, तो लिहाजा इस खुरूज निजासत का जो सबब है यानी नींद, उसी को इल्लत के कायम मकाम कर दिया गया, उसी पर हुक्म का मदार कर दिया गया कि जो शख्स भी पहलू के बल सोए या इस तरीके से सोए जिसमें आजा ढीले पड़ जाते हैं, तो फिर इस सूरत में वजू टूटने का हुक्म लगा दिया जाएगा। अब लोगों के लिए आसानी हो गई, जो भी पहलू के बल सो गया आसानी से वो फैसला कर लेगा कि मेरा वजू टूट चुका है, मुझे दोबारा वजू करना चाहिए। तो जब भी हुक्म की इल्लत पर मुत्तले होना दुश्वार हो तो फिर हुक्म का दारोमदार सबब पर कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई। तो यहां पर भी ये जो सैयबा होना है इसकी वजह से लड़की को समझ आ गई निकाह की, और जब समझ आ गई तो अब उस पर किसी को विलायत इजबार हासिल नहीं। तो विलायत इजबार न होने की इल्लत क्या है? समझ का आना। लेकिन समझ तो एक अमरे बातनी चीज है, उसका तो पता नहीं चल सकता, तो उस समझ का जो सबब है यानी सैयबा होना, उसी पर हुक्म का मदार कर दिया गया आसानी के लिए कि जो सैयबा है बस यूं समझो उसको समझ है, उस पर विलायत इजबार हासिल नहीं, और जो सैयबा नहीं मालूम हुआ उसको निकाह की समझ नहीं है, उस पर विलायत इजबार हासिल है। बात समझ में आ गई। यह माना है इमाम शाफी रहमतुल्लाह के कौल की वजह यह है कि नसियाबत सबबुन लिहुदूसिर राय, के सैयबा होना यह राय के बनने का सबब है, लिवजूद अलमुमारसती तजर्बे के पाए जाने की वजह से, कि इसको मर्द का तजर्बा हो चुका है तो अब निकाह के बारे में इसकी राय बन चुकी होगी, अदर नल हुक्म अलैहा तहसीरन, तो हमने भी सैयबा होने पर ही हुक्म का मदार कर दिया तहसीरन आसानी के लिए। आसानी इसी में है, ये तो पता नहीं चल सकता इसको समझ आई है या समझ नहीं आई, तो आसानी इसमें है कि बस सैयबा होने पर ही हुक्म का मदार कर दो, इस पर हुक्म का मदार कर दिया जाए, सैयबा है तो उस पर विलायत इजबार हासिल नहीं, और गैर सैयबा है तो उस पर विलायत इजबार हासिल है। भाई वलाना, और हमारी दलील, हमारे नजदीक सगीरा सैयबा ही क्यों ना हो उस पर विलायत इजबार हासिल है। अब उसकी दलील जिक्र करेंगे। वलना, और हमारी दलील जो है, मा ज़करना मिन तहक्कुकिल हाजती, वो जो हमने जिक्र कर दिया यानी हाजत का पाया जाना, सगीर या सगीरा भी निकाह की मसलहतों के मोहताज हैं तो मोहताज है निकाह के, वह वफूर शफकती, वफूर का माना है वाफिर होना, कसीर होना, वह वफूर शफकती, और शफकत का काफी हो जाना, कसीर होना, भाई हमने क्या कहा कि सगीर या सगीरा ये भी निकाह के मोहताज हैं, चाहे बाकेरा हो चाहे सैयबा हो, वो निकाह के आगे मोहताज हैं, उनको हाजत है निकाह के मसलहतों को हासिल करने की, और नीज बाप और दादा में शफकत कामिल है। बात समझ में आ गई। फिर देखिए दलील कहते हैं वलाना, और हमारी दलील जो है मा जकरना, वो जो हमने जिक्र कर दिया, मीन बयान है मा का, मीन तहक्कुकिल हाजती, यानी हाजत का पाया जाना कि इनको भी निकाह की हाजत है, वो वफूरी शफकती, और शफकत का वाफिर होना, कसीर होना, कि बाप और दादा की शफकत भी कसीर है, और नीज वला मुमारसता तुहदिसु रय बिदूनि शहवती। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि यह सगीरा सैयबा हो गई है, इसको निकाह का तजर्बा एक दफा हो चुका है, लिहाजा इसकी राय बन गई होगी, इसको समझ आ गई होगी निकाह की। हम कहते हैं कि जब यह सैयबा हुई थी, जब खावंद ने इसे सोहबत की थी, यह उस वक्त नाबालिगा थी, तो उस वक्त तो इसमें शहवत ही नहीं थी, जब शहवत ही नहीं थी तो उस सोहबत से भी इसको कोई निकाह की समझ नहीं आई भाई। तो हम कहते हैं वला मुमारसता तुहदिसु रय बिदूनी शहवती, और तजर्बा जो है यह राय नहीं बनाता, यानी मर्द का तजर्बा हो जाना यह लड़की की राय नहीं बनाता, बिदूनी शहवती, बगैर शहवत के। फयुदारुल हुक्म अला सिगरी, लिहाजा हुक्म का मदार सिगर पर ही होगा, यानी बचपने पर ही दारोमदार होगा। सुम अल्लज़ी युअय्यिदु कलामना फीमा तकद्दमा कौलुहु अलैहि सलाम, कहते हैं फिर वो चीज जो तायिद करती है हमारे उस कलाम की जो माकबल में गुजर चुका। भाई हमने माकबल में क्या कहा था कि विलायत निकाह वो सिर्फ बाप और दादा को हासिल है या और अवलिया को भी हासिल है, और अवलिया को भी हासिल है। अब उसके लिए हदीस जिक्र कर रहे हैं कि वो जो हमने विलायत को मुतलक रखा था, बाप और दादा के अंदर बंद नहीं किया विलायत इजबार को, बल्कि और अवलिया को भी विलायत इजबार हासिल होगी, हमारे इस कलाम की ताईद होती है हदीस से भी। देखिए भाई कहते हैं सुम अल्लज़ी युअय्यिदु कलामना, फिर वो चीज जो ताईद करती है यानी कुव्वत देती है हमारे कलाम को, फीमा तकद्दमा, हमारा वो कलाम जो उन चीजों में था जो माकबल में गुजर चुकी, यानी विलायत का मुतलक होना, उसके बारे में जो हमारा कलाम था वो हमारे उस कलाम को कुव्वत देती है। क्या चीज कुव्वत देती है? कौलुहु अलैहि सलाम, हुजूर अलैहि सलाम का ये कौल जो है कुव्वत देता है। अन निकाह इलल असबात, कि निकाह असबात के सुपुर्द है। हदीस का तर्जमा देख लो, अन निकाह इलल असबाती, निकाह असबात के सुपुर्द है, निकाह असबात के हवाले है। और याद रखो बाज अहादीस में इनकाह का लफ्ज आया है, क्या लफ्ज आया है? इनकाह। अल इनकाह इलल असबाती, निकाह करवाना असबात के सुपुर्द है। तो अब इसके अंदर देखो, यहां असबात मुतलकन जिक्र हैं, बाप और दादा जिक्र नहीं है, यह मालूम हुआ तमाम असबात का यही हुक्म है। बात समझ में आ गई। देखिए फिर तर्जमा देख लीजिए, सुम अल्लज़ी युअय्यिदु कलामा नाफीमा तकद्दमा, फिर वो जो ताईद करता है कुव्वत देता है हमारे कलाम को, फीमा तकद्दमा, उन चीजों में जो माकबल में गुजर चुकी उनके बारे में जो हमने कलाम किया था उसको जो चीज कुव्वत देती है। कौलुहु अलैहि सलाम, वो हुजूर अलैहि सलाम का ये कौल है। अन निकाह इलल असबाती, निकाह असबात के सुपुर्द है। मिन गैरी फसलिन, बगैर किसी फसल के, यानी बगैर किसी फर्क के, यहां बाप और दादा और असबात में कोई फर्क नहीं किया गया। वह तरतीब फिल आसाबात फी विलायत निकाह का तरतीब फिल इर्सी, और आसाबात के अंदर जो तरतीब है फी विलायत निकाह, विलायत निकाह के बारे में, का तरतीब फिल इर्सी, ऐसे ही है जैसे कि तरतीब होती है वरासत में। भाई अब तरतीब समझ लो भाई, विलायत किसको हासिल होगी? याद रखो ये विलायत इजबार जिन आसाबात को मिलेगी, ये आसाबात की वही तरतीब है जो वरासत के अंदर है। सिराजी के अंदर इसकी पूरी तफसील आ जाती है, पूरा बाब जिक्र होता है असबात के बारे में। और असबात मैंने बतलाया वो असबा भी नफसी ही मुराद हैं, यानी वो मर्द के जिनके साथ रिश्ता जोड़ने में दरमियान में औरत का वासिता ना आए, तो ये मर्द मुराद हैं। और इनके दर्जे याद रखें, याद रखो असबात में सबसे पहला दर्जा औलाद का है, यानी बेटा पोता पड़पोता वगैरह नीचे तक। देखो मुजक्कर होने चाहिए और दरमियान में औरत का वासिता ना आए, नवासा दाखिल नहीं, क्योंकि नवासे के साथ रिश्ता बेटी के वास्ते से होता है और वहां दरमियान में औरत आ गई। इसी तरह नाना भी दाखिल नहीं, क्योंकि नाना के साथ रिश्ता मां के वास्ते से है, तो दरमियान में औरत आ गई। तो यहां असबात की बात चल रही है, जो मर्द हो और दरमियान में औरत का रिश्ता भी न आए भाई। तो सबसे पहले दर्जे वाले असबात वो औलाद है, बेटा पोता वगैरह। दूसरे दर्जे वाले असबात उसूल हैं, बाप दादा परदादा ऊपर तक, ये सारे उसूल, ये दूसरे दर्जे वाले हैं। तीसरे दर्जे वाले असबात ये जो असले करीब है, बाप दादा वगैरह हमारे उसूल हैं, और इनमें सबसे करीबी असल क्या है? बाप। तो असले करीब की जो औलाद है यानी भाई, भाई भाई, और इसी तरह इन भाइयों की नीचे तक जो औलाद है, नीचे तक जो औलाद है, तो ये तीसरे दर्जे वाले हुए, यानी भाई, भाई का बेटा, भाई का पोता, भाई का पड़पोता, ये तीसरे दर्जे वाले हुए। चौथे दर्जे में है दादा की औलाद, पहले था बाप की औलाद यानी भाई वगैरह, अब है दादा की जो औलाद है यानी चचा, और चचा की औलाद नीचे तक, चचा का बेटा पोता पड़पोता वगैरह। तो ये तरतीब है, और इससे अगला दर्जा फिर आएगा परदादा की औलाद, इसी तरह ऊपर चलते चले जाएंगे। तो पहला दर्जा किसका है? औलाद, बेटा पोता वगैरह। दूसरा दर्जा उसूल का है, बाप दादा परदादा वगैरह। तीसरा दर्जा असले करीब की औलाद यानी भाई, और इसी तरह इन भाइयों की नीचे तक जो औलाद है। चौथा दर्जा असले बईद की औलाद यानी चचा और चचा की औलाद जो है। बात समझ में आ गई? तो याद रखो, जब पहले दर्जे वाला मौजूद हो तो दूसरे दर्जे वाला उसको विलायत नहीं होगी। यानी अगर एक औरत है उसका निकाह करवाना है, अगर उसका बालिग बेटा मौजूद है तो बेटा वली होगा, उसको विलायत निकाह हासिल है। अब उस औरत का बाप भी मौजूद है, लेकिन जब पहले दर्जे वाला वली जो है यानी औलाद मौजूद है तो उसको विलायत हासिल होगी, बाप को विलायत हासिल नहीं होगी। तो जब पहले दर्जे वाला मौजूद है दूसरे दर्जे वाले को विलायत नहीं, और अगर पहले दर्जे वाला नहीं मौजूद तो फिर दूसरे दर्जे में चले जाएंगे, वहां अगर कोई मौजूद है तो फिर तीसरे दर्जे वालों को नहीं देखेंगे, और अगर दूसरे दर्जे वाला भी कोई नहीं है फिर तीसरे दर्जे में चले जाएंगे, जब तीसरे दर्जे वाला कोई मिल जाए तो चौथे दर्जे वाले को नहीं देखेंगे। बात समझ में आ गई? फिर एक ही दर्जे के अगर कई औलिया मौजूद हैं, मसलन बेटा भी है, पोता भी है, पड़पोता भी है, ये सब पहले दर्जे वाले हैं, तो फिर इनमें करीबी को देखेंगे, इनमें सबसे करीबी बेटा है लिहाजा वो वली है, जब वो मौजूद है तो पोते और पड़पोते को नहीं देखेंगे, और अगर बेटा नहीं मौजूद फिर पोते को फिर विलायत हासिल होगी, पोता भी नहीं मौजूद फिर पड़पोते को विलायत हासिल होगी, और अगर पहले दर्जे वाला कोई भी नहीं मौजूद फिर उसके बाद दूसरे दर्जे वाले, और दूसरे दर्जे वालों में सबसे करीब बाप है तो बाप को विलायत होगी, अगर बाप नहीं है फिर दादा को विलायत होगी, अगर बाप मौजूद है फिर दादा को कोई विलायत नहीं है, क्योंकि जब करीब वाला मौजूद हो तो बईद वाला महरूम होता है, उसको विलायत नहीं मिलती। तो बाप के होते हुए दादा को कोई विलायत नहीं है, लेकिन अगर बाप और दादा पर दादा इनमें से कोई भी नहीं है फिर उसके बाद भाई को विलायत मिल जाएगी, भाई को विलायत मिलेगी। तो ये तीसरे दर्जे वाले हैं, और इसमें मैंने बताया भाई और उसकी सारी मुजक्कर औलाद भी आ गई, और इनके अंदर फिर अगर मसलन भाई फौत हो चुका है तो भाई का जो बेटा है वो फिर उसको विलायत मिलेगी। बात समझ में आ गई? तो जब करीब वाला मौजूद हो तो दूर वाले को विलायत हासिल नहीं होगी। और मैंने आपको बताया एक ही दर्जे वाले कई अफराद हों तो फिर जो उनमें सबसे करीब वाला हो उसको विलायत होगी, बाकियों को विलायत नहीं। बाप दादा परदादा तीनों मौजूद हैं तो बाप करीबी है, वो मौजूद है तो उसको विलायत है, दादा और परदादा को कोई विलायत नहीं है, वो इनका निकाह नहीं करवा सकता जबरदस्ती। और फिर यह भी याद रखना कि कुव्वत कराबत का भी एतबार है भाई, यानी जिसके साथ रिश्ते में कुव्वत ज्यादा उसका दर्जा पहले और जिसके साथ कुव्वत कम उसका दर्जा बाद में। मसलन देखो एक औरत है, उसके पहले दर्जे वाले असबात यानी औलाद में से भी कोई नहीं है, दूसरे दर्जे वाले असबात यानी उसूल में से भी कोई नहीं है, लेकिन तीसरे दर्जे वाले असबात यानी भाई हैं भाई। लेकिन भाई इसके फिर दो किस्म के हैं, कुछ अल्लाती भाई हैं, कुछ हकीकी भाई हैं। हकीकी भाई वो है जहां मां और बाप दोनों एक ही होते हैं, यानी सगे भाई बहन, हकीकी भाई बहन। इस औरत का और उस भाई के दोनों का बाप और मां एक ही हैं तो इसको कहेंगे हकीकी भाई, और अगर बाप एक है माएं अलग हैं तो इसको क्या कहेंगे? अल्लाती भाई। तो लिहाजा अब एक औरत है, उसके निकाह का मामला है, अब भाई मौजूद हैं लेकिन हकीकी भाई भी मौजूद और अल्लाती भाई भी मौजूद। अब ये दोनों तीसरे दर्जे के आसबा हैं लेकिन इनमें हकीकी भाई के अंदर कुव्वत कराबत ज्यादा है, उसके साथ बाप के वास्ते से भी रिश्ता और मां के वास्ते से भी रिश्ता, तो कुव्वत कराबत ज्यादा है। लिहाजा हकीकी भाई जब मौजूद है तो अल्लाती भाई पर यह मुकदम होगा, क्योंकि अल्लाती भाई से जो रिश्ता है वो सिर्फ बाप के वास्ते से है, मां के वास्ते से नहीं। ज़ाब्ता समझ में आया? हासिल कलाम क्या? सबसे पहले असबात में कौन है? औलाद। दूसरे दर्जे में उसूल। तीसरे दर्जे में असले करीब की औलाद नीचे तक। और चौथे दर्जे में असले बईद यानी दादा की औलाद यानी चचा वगैरह नीचे तक भाई। और फिर जब करीब वाले दर्जे के मौजूद हों तो बईद वाले दर्जे को नहीं देखेंगे। और फिर जब अगर एक ही दर्जे के कई अफराद हैं तो उनमें जो करीबी होगा उसको विलायत हासिल होगी, दूर वाले को विलायत हासिल नहीं होगी। और फिर अगर एक ही दर्जे वाले कई अफराद हैं और कुर्बो बुअद भी एक जैसा है, मसलन दोनों भाई हैं या दोनों चचा हैं, तो फिर कुव्वत कराबत को देखा जाएगा। अगर एक हकीकी भाई है और एक अल्लाती भाई है तो हकीकी भाई को विलायत हासिल होगी जबकि अल्लाती भाई को विलायत हासिल नहीं होगी। या इसी तरह एक हकीकी चचा है एक अल्लाती चचा है भाई, अगर चचा वली बन रहा है बाकी और किसी दर्जे वाला कोई शख्स मौजूद नहीं, चचा को विलायत मिल रही है, और लेकिन चचा तो दो किस्म के हैं, एक हकीकी चचा है एक अल्लाती चचा है, तो हकीकी मुकदम होगा उसको विलायत निकाह हासिल होगी, अल्लाती को विलायत निकाह हासिल नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वत्तरतीबु फिल असबाती फी विलायत निकाही, और विलायत निकाह के अंदर जो असबात की तरतीब है, कत तरतीब फिल इरसी, ये उसी तरह है जैसे कि वरासत में असबात की तरतीब होती है। वल अबअदु महजूबुन बिल अक्रबी, और दूर वाला जो है वो महरूम होता है करीब वाले की वजह से। बेटा और पोता और पड़पोता तीनों मौजूद हैं तो बेटा वली बनेगा, दूर वाले जो हैं यानी पोता और पड़पोता वो महरूम हो जाएंगे बेटे की वजह से, यानी बेटा उनके लिए रुकावट बन जाएगा। ये माना है वल अबअदु, और दूर वाला जो है महजूबुन बिल अक्रबी वो महरूम होगा बिल अक्रबी करीब वाले की वजह से। बात समझ में आ गई? अब याद रखना ये जो सगीर और सगीरा की बात चल रही है, यहां अव्वल दर्जे वाले यानी बेटे पोते तो हो ही नहीं सकते क्योंकि सगीरा है जी। तो लिहाजा यहां सबसे पहले विलायत हासिल होगी बाप को, अगर बाप मौजूद है उसको विलायत इजबार हासिल है और किसी को नहीं। अगर बाप नहीं है तो फिर दादा को देखेंगे, दादा को विलायत इजबार होगी। अगर दादा भी न हुआ फिर उसके बाद परदादा को विलायत इजबार हासिल होगी, लेकिन अगर बाप मौजूद है फिर दादा या परदादा को विलायत इजबार नहीं होगी भाई। और फिर उसके बाद अगर बाप भी नहीं है, दादा परदादा भी नहीं है, तो फिर जो हकीकी भाई अगर है तो उसको विलायत हासिल होगी, अगर हकीकी भाई नहीं है तो फिर अल्लाती भाई को विलायत हासिल होगी। और इसी तरह फिर अगर ये जो मर्द हैं ये जो असबात हैं इनमें से कोई भी ना हुआ तो फिर मां को विलायत हासिल होगी। अब मां की बारी आई है भाई। याद रखो ये जो मर्द जिनके साथ रिश्ता जोड़ने में दरमियान में कोई औरत ना आए इनको असबात कहते हैं, और इनके अलावा बाकी तमाम रिश्तेदारों को जविल अरहाम कहते हैं। क्या कहते हैं? जविल अरहाम। लिहाजा मालूम हुआ ये नवासा और नवासी भी क्या हैं? जविल अरहाम है, असबात नहीं है। नाना और नानी ये भी क्या है? जविल अरहाम है। तो जविल अरहाम में औरतें भी आ गईं और बाकी रिश्तेदार भी आ गए। तो लिहाजा अगर असबात में से कोई भी नहीं है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दर्जे वाला कोई एक भी असबा नहीं मिला या हमें मालूम नहीं है, तो फिर याद रखो अब जविल अरहाम जो हैं उनको विलायत मिलेगी, और उनमें सबसे पहला दर्जा मां का है, मां का है। अगर मां भी जिंदा नहीं है तो फिर याद रखो विलायत इजबार मिल जाएगी दादी को, अगर दादी भी जिंदा नहीं है तो फिर उसके बाद विलायत इजबार मिलेगी नानी को। बात समझ में आ गई? और फिर उसके बाद नानी के बाद नाना का दर्जा है भाई, अगर नानी भी जिंदा नहीं है तो फिर नाना को विलायत इजबार हासिल होगी, और अगर नाना भी जिंदा नहीं है फिर हकीकी बहन जो है उसको जो है विलायत इजबार हासिल हो जाएगी। सगीरा की जो हकीकी बहन है, अगर वो भी नहीं है तो फिर जो अल्लाती बहन है उसको विलायत इजबार हासिल हो जाएगी। तरतीब समझ में आ रही है। और अगर कोई भी नहीं है, ना असाबाद में से कोई है ना जबिल अरहाम में से कोई है, तो फिर आखिर में काजी जो है उसको विलायत हासिल हो जाएगी, बशर्ते के बादशाह ने उसको इजाजत दी हुई है यतीमों की निकाह करवाने की। बादशाह ने उसको यतीमों का निकाह करवाने की उसको इजाजत दी हुई है। तो जब असबात में से भी कोई नहीं, जबील अरहाम में से भी कोई नहीं, तो फिर काजी को यह विलायत हासिल हो जाएगी। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।